ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 23 से प्रारंभ किया जाएगा। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमौ सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागायुत प्राणं मल्लौ गजपतिं तथा अवधिष्टां लीलयैव पशुनिव मृगाधिपः तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवे भराट् बभञ्जैकेन हस्तेन सप्ताह मदधागिरिं प्रलम्बोधेन कोरिष्टः तृणावर्तो बकादयः दैत्यः सुरासुरजितो हता जेने हलीलया। श्रीशुक उवाच इति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्दः कृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कण्ठो भवत्तुष्णीम् प्रेम प्रसरविह्वलः यशोदावर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च श्रीमन्तश्रूण्यवाश्राक्षेत् स्नेहस्मत्पयोधरा तयोरित्थं भगवती कृष्णे नन्दजशोदयः वीक्ष्यानुरागं परमं। ये र पल हो गया है, बिंदु होना चाहिए मा पल। वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाहोधवो मुदा। उद्धव उवाच युवां श्लाघ्यतमौ नूनम् देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुरौ जत्कृतामतिरीदृशी। एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनी रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीयभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषा तैमौ पुराणौ जस्मिन् जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हृत्य कर्माशयमाशु जाति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः। तस्मिन् भवन्ता वखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मा किं वावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम्। आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रः भगवान् सात्वतां पतिः। हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वताम् जदाह्वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत् मा खिद्यतं महाभागौ द्रक्षथ कृष्णमन्तिके अन्तर्हृदि सभूतानां आस्ते ज्योतिर्वैधसी। वे कहते हैं उद्धव जी से, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्तौ इह सुरोत्तमौ सुराणा महदअर्थाय गर्गस्य वचनम जाता है। हे उद्धव, जैसा गर्गाचार्य जी ने महत वचन कहा है, ये महत वचन का विशेषण है, इसका अर्थ है गंभीरम। हमारे गुरु महाराज ने हमसे कुछ बातें कही है जो गंभीर बात है। गंभीर का अर्थ है कि उसका अर्थ समझना कठिन हो रहा है। क्यों अर्थ समझना कठिन हो रहा है? कई कई बात वे बोले कि ये नारायण के समान है, लेकिन इसकी रक्षा करना गोपाय सुसमाहित है, गुणों में नारायण इसके समान है या नारायण के समान यह है। पहले कभी वसुदेव जी के यहां जन्म लिया था तो मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं, पहले लिया था तो इस समय का सब परिचय देना था ना, कृष्ण के बारे में बताना था, तो कई कई जन्म कोई बिता चुका है तो कई जन्मों के बाद थोड़े पूछ रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि प्रागयम वसुदेवस्य कचित जातस्तवात्मज, साहब कहे कि तव आत्मज, आपका पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के यहां भी जन्म लिया था। बहुत गंभीर बात बोले। गंभीर का एक अर्थ है समझने में दुःसक्य और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये भी अर्थ है गंभीर। महत वचन, महत वचन। तो मैं कृष्ण को और राम को, श्री बलराम को सुरोत्तम मानता हूं। सुराणाम सुरेशु उत्तमौ सुरोत्तमौ, सुर माने देवता, देवताओं में उत्तम, तो देवताओं में सबसे उत्तम है भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शिव शंकर जी, सुरोत्तम इनको कहा जाता। तो मैं तो कृष्ण बलराम को सुरोत्तम मानता हूं। वास्तव में कृष्ण तो सुरोत्तमोत्तमोत्तमोत्तम सबसे उत्तम है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि अतोस्मी लोके वेदे च प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, मैं क्षर से भी अतीत हूं और अक्षर से भी अतीत परे। इस प्राकृत जगत में जो जीव हैं प्राकृत शरीर में, इनको क्षर कहा गया है और भगवान के धाम में जो जीव रहते हैं नित्य मुक्त हैं उनको अक्षर कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अक्षर और क्षर दोनों से परे हूं, इसलिए लोक में भी सारे जगत में और वेद में भी सारे शास्त्रों में भी मुझको पुरुषोत्तम कहा जाता है। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है जिसमें भगवान स्वयं अपने विषय में बोले हैं, परंतु गर्गाचार्य ने नंद महाराज ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को बढ़ा रहे हैं कि कौन है तो देवता में उत्तम, ये नहीं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं कि ये साक्षात स्वयं भगवान है, देवता तक चढ़ा रहे हैं। और वह इसलिए कि सोचते हैं कि जब कृष्ण का ये सब गुण वर्णन करूंगा, ऐश्वर्य की बात कहूंगा, तो कृष्ण के प्रति मेरा पुत्र स्नेह शिथिल होगा और यह पुत्र स्नेह ही इतना दुख दे रहा है। पुत्र स्नेह के कारण मेरा खान पान सब शिथिल हो चुका, मरने की दशा है, तो उद्धव से कुछ कहूंगा, कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करूंगा तो कुछ पुत्र भाव कम होगा और सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जितना ही वर्णन कर रहे थे ऐश्वर्य का या माधुर्य का, तो उनका पुत्र भाव और पुत्र स्नेह उतना ही अधिक बढ़ रहा था। नंद बाबा का वात्सल्य भाव कभी शिथिल नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि मैं मानता हूं, मन में मैं यही सोचता हूं कि कृष्ण और बलराम ये दोनों विष्णु भगवान और शंकर भगवान है। और देवताओं के प्रयोजन के लिए, देवताओं का काम करने के लिए, देव विरोधी दैत्यों का वध करने के लिए इसका अर्थ ही है, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। तो पृथ्वी का भार दूर करना मतलब दैत्यों को मारना, पापियों को मारना, यही देवताओं का प्रयोजन है। तो उसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए दोनों देवता आए हैं, हमारे घर में कृष्ण बलराम बन करके जन्म लिए। यह अर्थ है कि मदगृह है, हमारे घर में जन्म लिया। इसके साथ ही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि गुरु का वाक्य है, गर्गाचार्य ने कहा, उनका अनुभव तो झूठा हो नहीं सकता। ऐसे उन्होंने ये नहीं कहा कि ये यह नारायण है या शंकर है, जो उन्होंने कहा कि यह विलक्षण लड़का है, गुणों में नारायण के समान है। तब उद्धव हम यही सोचते हैं कि तब नारायण ही एक है, एक सांवला जो है नारायण है और गोरा बलराम और शंकरषण है। वसुदेव और शंकरषण ये सर्वोत्तम हो। देवताओं के प्रयोजन के लिए जन्म लिए हैं, देवताओं का काम करने के लिए दोनों आए हैं, हमसे हमारा काम थोड़े करेंगे, हमको तो छोड़ करके चले गए, काम क्या करेंगे। गर्गाचार्य का तो वचन है ही आस प्रमाण है, कृष्ण बलराम देव श्रेष्ठ है, मनुष्य नहीं है दोनों। इसके साथ ही साथ हमारा अनुभव भी, हमने जो देखा है सुना है उसके अनुसार भी यही पुष्ट होता है कि ये दोनों देव श्रेष्ठ, एक वासुदेव हैं और एक शंकरषण, भगवान विष्णु और शेषनाग सुरोत्तम, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, देवताओं से श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ नहीं, देवताओं से श्रेष्ठ। क्या क्या आपने देखा है सुना है, कैसे आप ये बात कह रहे हैं, तब नंद महाराज कहते हैं कंसम नागायुक्त प्राण, कंस में 10,000 हाथी का बल था, मल्लव गजपतिम तथा, तथा मैंने वैसा ही ठीक 10,000 मल्लव, दो मल चारुण और मुष्टिक, और भी बहुत से मल्ल थे, उनमें 10,000 नहीं तो 8,000-7,000 हाथी का बल था ही, जो ही कहिए। मल्लव दो ही मल्ल को पहले ले रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो युद्ध हुआ था कृष्ण का और बलराम का देर तक हुआ था, इसको रंगभूमि में मंच पर बैठकर नंद बाबा देखे थे। 10,000 हाथी का बल कंस में था और उतना ही बल चारुण में था और उतना ही बल मुष्टिक में था, तो 10,000 30,000 हाथी और गजपति हस्तिश्रेष्ठ कुबले अपीर उसमें भी 10,000 हाथी का बल था, तो 40,000 हाथी को केवल लात से तमाचा से मार देना बहुत 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 भारी बात है ना, वो भी आजकल के टूटे हुए हाथी नहीं, बहुत मजबूत 10,000 हाथी। 40,000 हाथी को ये लोग मार दिए, इस तरह से नंद बाबा कह रहे हैं। ये कार्य तो भगवान शंकर या शेषनाग या भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अपने उक्ति का प्रमाण पेश कर रहे हैं, जो देखे हैं कुछ सुने। कैसे मारे? लीलया एवा लीला पूर्वक, खेल खेल में। किसी को मारे, कंस को मारे तो कोई अस्त्र नहीं लिए, चढ़ गए उत्तुंग मंच पर और वहां पर उसके केस को पकड़ करके पटके अखाड़े में गिर गया, मर गया, उसके छाती पर कूद गए। ये लीला खेल खेल में ही कंस को मार दिया। और मल्लव कंस के सामने पहलवानी दिखाई जा रही थी, दंगल हो रहा था राजा का मनोरंजन, उसमें भी कोई लाठी कोई राइफल कोई धनुष बाण आदि का प्रयोग नहीं किए। लड़ते लड़ते किसने हाथ से पकड़ा, चारों को घुमा घुमा करके मार दिया, और बलराम ने बाएं हाथ से मारा अवहेलना पूर्वक मुष्टि को, तमाचा मारा तो वहीं गिर गया। तो खेल ही है ना, जब हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो खेल है, खेल खेल में मार दिया। और गजपति को हस्तिराज को कुबलया पीड़ को उसकी सूंड पकड़ करके पूछ पकड़ करके मार दिया। ये दोनों भगवान नहीं है तो और क्या है, ऐसा काम दूसरा कौन कर सकता है। नंद बाबा का अनुभव, ऐसे किसी को शास्त्रों की जानकारी नहीं है और देखा भी नहीं कोई चीज, सुना भी नहीं किसी के मुख से, तो वो कैसे कृष्ण को समझेगा। प्रथम प्रमाण तो ये है कि ऋषियों का वाक, जैसे श्रीपद गर्गाचार्य जी का वाक, ये परम प्रमाण है। यदि कहते हैं कि ये भगवान है तो भगवान है, तो गुरु का वचन भी सुने हैं, शास्त्र भी सुने हैं और प्रैक्टिकल भी देखे हैं। वही चीज हुआ, अब संशय की कहां बात है। इसीलिए नंद बाबा कहते हैं कि मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ता विह सुरोत्तम। मन्ये मैं उनको देवश्रेष्ठ मानता हूं, नतु पुत्र इति अर्थ। ये केवल कह रहे हैं, थोड़े देर के लिए क्षण भर के लिए विचार आया है, लेकिन स्थायी भाव इनका दसा हुआ है हृदय में कि कृष्ण बलराम पुत्र ही हैं और दूसरे नहीं है। ये सब तो लीलाएं वे देखे हैं और गर्गाचार्य जी की बात भी सुने, तो उसे विश्वास थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादा लीला तो यही देखे हैं कि बाबा मुझे गोद में लीजिए, रो रो करके कहते हैं कृष्ण, गोद में आना चाहते हैं, गोद में आना चाहते हैं। और कई भय की लीला, भूख की लीला करते रहते हैं। वन से लौट करके प्रथम दिन आए तो कहते बाबा आदमी बाघ देखा, क्योंकि बाघ नहीं साधारण जीव देखे थे। सिपाकर कहते बाघ देखा तो हाँ, और भैया बलराम हमको अकेले छोड़ कर चला गया है। बलराम जी बहुत मजाक करते थे, कृष्ण कहीं रहते थे एकाएक हल्ला करते थे सभी गोपों से, सिखा देते थे सब भाग जाना, इधर उधर छिप जाना, हल्ला करते थे, बाघ आया सब भाग गए। और कृष्ण रोने लगे, और कोई बच्चा बाघ की बोली बोलता था तो और रो जो दिए, बाबा के अलावा कोई रक्षक नहीं है, सब हमको धोखा दिए, ये रोने लगते। मैया मही दारू बहुत सतायो, मुझको बहुत सताया, हमको छोड़ करके चला गया और मैं अकेले रो रहा था। मां यशोदा कहती है बलराम बहुत बुरा लड़का है, तो बुलाकर कहते तुम अकेले छोड़ करके गया था। बलराम जी को बुला करके पूछती है तुम अकेले छोड़ा था। नहीं मैया थोड़ा मजाक कर रहा था। तो ऐसे मजाक कर किया जाता है, ये अभी भी रो रहा है। कोई विलक्षण और कोई लोमड़ी को सियार को भी देख लिए तो कहते तो बाघ देखे थे, ये किए थे। ये सब लीलाएं हैं, कैसे मान सकते थे नंद महाराज की ये भगवान है। तो दुर्गाचार्य कहें या चाहे लाख लीला देखें आंख से, यही भाव था कि मेरा पुत्र है और पुत्र के प्रति अच्छे स्नेह था, इसीलिए तो रो रहे थे। पर थोड़े देर के लिए मन में आ रहा है गर्गाचार्य जी की बात सुनकर के देख करके, तो मैं तो कृष्ण बलराम को भगवान मानता हूं। आगे सुनेंगे कि भगवान मानते ये कहा, लेकिन क्षण भर का विचार था। प्रमाण दे रहे हैं पाल, तालत्रयम महासारम धनुर यष्टि मिवे भराट बभंजई के न हस्ते न। हमने देखा था अपने आंख से कंस के रंगशाला में, नहीं कंस के यज्ञ मंडप में एक धनुष रखा था और उसके लिए बहुत से रक्षक भी थे, बहुत सिपाही पुलिस सब खड़े थे, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो कृष्ण बलराम रास्ते में पूछे मथुरा जी के गलियों में घूम रहे थे, तो रास्ते में किसी से पूछे धनुष जग कहां हो रहा है। तो किसी ने बताया कि ऐसे चले जाइए, वहां से इतनी दूर पर है। कृष्ण गए और मथुरा की जनता तो जा ही रही थी, बहुत भारी भीड़ थी। कृष्ण बलराम आगे बढ़ गए, ने सखाओं को छोड़ करके आगे बढ़ गए और कृष्ण सीधे धनुष के स्थान पर जाने लगे, जैसे कोई मंदिर में जाए और डीटी रूम में सीधे घुसने लगे। इसको तो रोकेंगे ना कि हाँ सेकंड सेशन लिया कि नहीं, इधर के मार रहा है इधर के। कृष्ण गए, कोई भय नहीं था, पुलिस सब खड़े थे और लोग रोक रहे थे, अरे इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, अरे अरे क्या कर रहा है लड़का, ये क्या कर रहा है, नहाया धोया है, शिव जी का धनुष से पूजा की जाती, उधर नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। वो मारने के लिए दौड़े, घेर लिए चारों तरफ से, कृष्ण बलराम को चारों तरफ से घेर लिए, बब्रू लिखा गया कि घेर लिए, आवरण कर लिए और मारने के लिए चले, हथियार उठाए सब, मारना ही चाहते थे, पकड़ना चाहते थे। तब तक तो कृष्ण धनुष के पास गए, ऐसे बाएं हाथ से उठाए अवज्ञापूर्वक, बाएं हाथ से उठा और ऐसे जमीन पर रखकर तौल से गन्ना जैसे तोड़ा जाता है वैसे तोड़ दिया। यहां तो जष्टि लिखा गया है, लेकिन जष्टि का अर्थ है गन्ना, आगे कहा गया है यहां पर हरिद्वार में जब लीला कहा था तो उसमें याद आ रही थी, गन्ना के समान जैसे कोई गन्ना तोड़ दे, और कौन तोड़े, इवराट गजेंद्र हाथियों में सर्वश्रेष्ठ हाथी जैसे गन्ना तोड़ दे, जो भारी भारी वृक्षों को तोड़ता है उसके लिए गन्ना तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। तो जैसे हाथी गन्ना को तोड़ दे, वैसे श्री कृष्ण सबके देखते देखते तोड़ दिए। जब तोड़ दिए कृष्ण, तो इसके बाद रस्सी को भी तोड़ दिए, दो तो दो जगह हो गया। एक को ये लिया और इशारा किए बलराम जी को कि लीजिए ये अस्त्र। तो बलराम जी लिए और जितने पुलिस थे वहां, कंस के सब साथी थे पापी लोग, सबको मार दिए वहीं पर। जो जो इनको मारने के लिए घेरे, तो सरकारी नौकर थे बेचारे, क्या करें, कंस के आदेश था। जो आए तो कृष्ण मारे कुछ लोगों को और कुछ को बलराम जी, धनुष चला करके नहीं, धनुष के खंड से एक एक खंड से मारना चलकर वहीं पर मार दिए, बाकी लोग भाग गए। ये पहला सहज प्रदर्शित किया भगवान ने। तो उसी की नंद बाबा याद कर रहे हैं कि तालत्रय महासारम, धनुष कितना लंबा था, मजबूत था, धनुष का वजन था 3.5 लाख मन, 3.5 लाख मन, एक मन 38 किलो का होता है, 37 किलो, 40 शेर का एक मन होता है, तो 3.5 लाख मन धनुष था। उसको आज तक कोई नहीं उठाया था, कंस भी नहीं उठाया था, केवल पूजा होती थी, पता नहीं किस दिन काम में आता फालतू धनुष, ऐसे पूजा हो रही थी। धनुष यज्ञ का बहाना किया था, बहुत बड़ा फेस्टिवल, तो जिसकी पूजा हो रही थी उसी की पूजा भगवान ने कर दिया, तोड़ करके फेंक दिया। बहुत भारी निराशा हुई। और कंस के लिए यह भविष्य का वचन था, भविष्यवाणी थी कि जिस दिन धनुष तोड़ा जाएगा तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु आ गई। एक प्रकार से भगवान ने नोटिस दे दिया। सब लोग रोक रहे थे और परम दुःसाहसी कृष्ण जाकर के तोड़ दिए। तो छोटा सा बच्चा गया, चारों तरफ पुलिस अपना हथियार लेकर के खड़े हैं और कोई भय नहीं, जाना खेल खेल में तोड़ दे। उसके बाद भी जब चलो प्रभाव देख करके भी कृष्ण को बांधने के लिए चले, कहने लगे बांधो बांधो, बांध करके दिखाना है कि जीवित ही पकड़कर कंस के सामने हाजिर करना है, घेरो बांधो, ये करो वो करो, तब तक सब मारे गए। धनुष कैसे तोड़े, एकेना हस्तेना बामेना इत्यर्थ, बाएं हाथ से धनुष तोड़ दे, उठाए पहले उठाए और उठा करके एक सिरा पकड़े, एक सिरा को जमीन से लगाए, से गन्ना जैसा तोड़ दिए। इसको कहते हैं भगवान, भले वो बाल लीला कर रहा है तो क्या। अच्छा, इसके साथ ही इस प्रकार का ऐश्वर्य की लीला नंद बाबा याद कर रहे हैं। तो कहते हैं सप्ताहम अदधात गिरी, और एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, एक ही हाथ से। ये दोनों कर्म का एक ही साधन है, बभन एके न हस्ते न, और एके न हस्ते न गिरीन दधात, अभी सप्ताहम, एक ही हाथ से 7 दिन पर्वत उठाएगा, हाथ बदला भी नहीं। किसी आदमी पर भार किसी चीज का होता है तो इस हाथ से इस हाथ पर रख ले, तो इस कंधा से इस कंधा पर, कभी पीठ पर कभी सिर पर, लेकिन एक हाथ से और हाथ के कनिष्ठा अंगुली पर बाएं हाथ से उठाया। बायां हाथ जनरली कमजोर माना जाता है ना, सामान्यतः यही नियम है, किसी किसी का बायां हाथ बलवान होता है, बायां हाथ से लिखता है या काम करता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि दाहिना हाथ बलवान होता है और बायां हाथ कमजोर होता है। कृष्ण ने बाएं हाथ पर उठाया, फिर भगवान के लिए बाएं दाएं का कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी लोक के अनुसार बोल रहे हैं बाएं हाथ से, और बाएं हाथ में भी अंगुली पर, और अंगुली में भी सबसे छोटी अंगुली पर उठा लिए, और वो भी सप्ताह 7 दिन धारण किया, पैर से भी एक पग चला नहीं, उठाए रखा। तो ये सब क्या है? इससे पता चलता है कि कृष्ण साक्षात भगवान है। बलराम जी को भी शामिल करके कह रहे हैं कृष्ण बलराम दोनों ईश्वर है, सुरोत्तम है। अब ब्रज की याद कर रहे हैं फिर, और असुर मारने की, प्रलम्बो धेनुको रिष्ट तृणावर्तो बका गया, प्रलम्बासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर तृणावर्तासुर बकासुर आदि दैत्यासुर असुर जितो, ये सब दैत्य थे और देवताओं को और दैत्यों को असुरों को भी जीत लिए थे। सुरासुर जीत, बकासुर तृणावर्त अरिष्टासुर धेनु प्रलम्ब और पूतना अघासुर इत्यादि आदय शब्द से तत्पर्य। ये दैत्य सुरासुर जीत, सुर का अर्थ देवता, देवताओं को भी जीत लिए थे, कोई देवता इनके सामने नहीं ठहर पाया, और असुरों में भी इनके विरोधी असुर इनके समय नहीं टिक पाए। परंतु कृष्ण ने इन असुरों का वध किया लीलया, खेल खेल। दोनों का वर्णन कर रहे हैं तो फिर एक वचन का प्रयोग क्यों करने लगे? जेना ऐसा ये सिद्धांत है, कृष्ण और बलराम दोनों एक ही हैं, इसलिए एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाते कोई बुरा नहीं है, ये उचित है। यहां पर कहा गया कि प्रलम्बासुर को, धेनुकासुर को, इन सबको, और तृणावर्त बकासुर आदि को, अरिष्टासुर को कृष्ण ने मारा। तो वास्तव में कृष्ण ने प्रलम्बासुर का वध नहीं किया था, धेनुकासुर का वध किया था बलराम जी ने, और प्रलम्बासुर का भी वध बलराम जी ने किया था। तो यह कैसे कहा जाए? नंद बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण ने वध किया प्रलम्बासुर का, धेनुकासुर का। तो धेनुकासुर का वध करने में वो तो साथ में थे, ताल बन में गए थे साथ में। ऐसा अगर कोई बच्चा आकर के ब्रज में कहे कि कृष्ण ने मारा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, साथ में थे। लेकिन प्रलम्बासुर को मारने में भगवान साथ में नहीं थे, तो हवाई जहाज की तरह लेकर के उड़ा था। अब बाद में बलराम जी मारे थे उसके सिर पर, गिर गया जमीन पर। जो भी हो, कृष्ण जो लीला किए हैं उसको कहीं कहीं कहा गया है कि बलराम जी ने वध किया, और बलराम जी ने जिसका वध किया उसके लिए कहा गया है कृष्ण ने वध किया। एक टीकाकार लिखते हैं कि लड़कों ने आकर के कहा होगा, वहां एकदम हिसाब कौन देने जाए कि इसको इसने मारा है। मारने में दोनों ही तेज थे, कृष्ण और बलराम, तो बच्चे ऐसा रिपोर्ट देते थे, अथवा कुछ काल बीतने के बाद लोग भूल जाते होंगे कौन किसको मारा है, कौन देवरा रखे। तो कह देते थे कृष्ण ने मारा। तो नंद बाबा यह कह रहे हैं प्रलम्बो धेनुको अरिष्ट तृणावर्त बका दय दैत्यासुरासुर जितो हता जेने हलीलया, जिसके द्वारा, कृष्ण के द्वारा लीला पूर्वक के लोग मारे गए। बका दया, बक आदि, बक आदि से तात्पर्य कम से कम उसकी बहन और उसका भाई, दो तो आ ही जाएंगे तत्काल, अघासुर और पुतना, सब बकी बकानुज, बकी और बक का छोटा भाई था अघासुर, एक का नाम था बकी और एक का नाम था बक और एक का नाम था अग। लेकिन किसी भी देवता आदि से परम सौभाग्यशाली है, भक्तों से भी ज्यादा सौभाग्यशाली है, भगवान के साथ इनका संपर्क हुआ है। ये सब श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए, तृणावर्त और तृणावर्त, धनुकासुर, अरिष्टासुर, जो बैल के रूप में, सांड के रूप में गया था ब्रज में, बड़ा बड़ा भय उत्पन्न कर रहा था। इसकी सिंह पकड़ करके भगवान ने इसको ठेला पीछे और इसके बाद पटक दिया, उसका मस्तक ऐंठ करके पटक दिया और इसके बाद पैर दबा करके उसका सिंह उखाड़ लिया, उसी से मारा उसको। अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, धेनुक तो गधे के रूप में आया था, बलराम जी ने मारा। इनकी विशेषता श्री नंद महाराज बता रहे हैं, सुरासुर जीत, सुर असुर सबको जीत लिए थे लोग, और इनको खेल खेल में कृष्ण बलराम ने मार दिया। तो हे उद्धव, इसी से मैं संभावना कर रहा हूं कि ये दोनों देवताओं में श्रेष्ठ है। तो पहाड़ कोई मनुष्य कैसे उठाएगा, वो भी बच्चा 7 वर्ष का, कैसे संभव हो सकता है। तो सब प्रमाण दे रहे हैं, आर्ष प्रमाण और लोक प्रमाण, हमने ही केवल नहीं देखा था, और लोगों ने देखा था, नंद बाबा कहने का सही सुने थे। तो मैं तो नंद बाबा रो रहे कहते, मैं तो भगवान मानता हूं, तो पुत्र नहीं मानता। तब तो रो क्यों रहे हैं, पुत्र नहीं मानते हैं तो रो क्यों रहे हैं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्त धी, कृष्णानुरक्त धी नंद इति संस्मृत्य संस्मृत्य। इस प्रकार बारंबार भगवान की लीलाएं उनके हृदय में छा रही थी, वे स्मरण कर रहे थे। ये तो केवल शब्द की एक पकड़ है, इसको ऐसे कहा जाता है, लेकिन वास्तव में स्मृत्य संस्मृत्य संस्मृत्य स्मरण करके वे इस तरह से रो रहे थे, और कुछ देर में, कुछ काल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। अब आगे वर्णन की सामर्थ्य नहीं रही, बोल नहीं सके। तो लीलाएं धारावाहिक नंद बाबा के हृदय में आ रही हैं, मथुरा में जो देखे थे वो सब लीलाएं, और ब्रज में। तो ये ऐश्वर्य परक लीलाएं तो याद आ ही रही थी, और इसके साथ साथ कृष्ण का हंसना, कृष्ण का बोलना, मचलना और अज्ञता उनकी, और बाबा के प्रति और मां यशोदा के प्रति जो प्रेम के वाक्य बोलते थे, वो सब स्मरण आते थे। क्योंकि कृष्णानुरक्त थी, स्वभाव से ही कृष्ण में अनुरक्त बुद्धि वाले हैं, उनका हृदय अनुरक्त रहता, और उद्धव जी के आने पर और अधिक कृष्ण की लीलाएं उठने लगी हृदय में। क्योंकि उद्धव जी कृष्ण जैसा भेष धारण किए थे, और अधिक याद आ रही है। अति उत्कंठो भवत तुष्णिम, कृष्ण को देखने की, कृष्ण से मिलने की अति उत्कंठा उत्पन्न हुई, और इस कारण से उनका गला वाष्प से भर गया, और आगे कुछ भी बोलने में, करने में, ये प्रश्न पूछने में समर्थ नहीं थे। उद्धव जी से न कुछ पूछ रहे थे, न बोल रहे थे, और न कुछ कर रहे थे। अभवत तुष्णिम, कुछ काल के लिए वे बिल्कुल चुप हो गए। चुप हो गए मतलब अब आगे बोलने की शक्ति ही नहीं थी। उद्धव जी देख रहे हैं कि नंद बाबा बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है, गला इतना गदगद हो गया कि प्रेमा प्रसर बिहवला, प्रेम की ऐसी बाढ़ उमड़ी, प्रसर, प्रसर कहते प्रसार, प्रेम इतना उत्पन्न हुआ, पुत्र स्नेह इतना उत्पन्न हुआ कि इसके लिए विह्वल हो गया और बोल नहीं सके। वहीं पर मां यशोदा बैठी थी। जैसे नंद बाबा कृष्ण के विषय में बोल रहे थे, वैसे यशोदा जी बोल नहीं पाई कुछ भी। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्र सच्चरितानि च श्रीमन्ति। यशोदा केवल अपने पुत्र के वर्णन को सुन रहे थे, श्रीमंती और सुनती थी, और अश्रुणी अवाश्राक्षित, केवल उसके आंखों से आंसू झर रहे थे। वो तो कुछ पूछ नहीं सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी कि हमारा बेटा कैसे है, मथुरा में ठीक है ना, इसको पूछने की भी शक्ति उसमें नहीं थी, केवल सुन रहे थे। और उसके आंख, उसका वस्त्र सब आंसू से भींगा हुआ था। इसके साथ स्नेह स्नुत पयोधरा है, और अपने पुत्र श्री कृष्ण के स्नेह के कारण उसके अस्तनों से दूध झर रहा था। तो आंखों से अश्रुणी और स्तनों से दूध झर रहा था। नंद बाबा तो कुछ पूछ लिए थे समाचार, कुछ कृष्ण के बारे में बोल चुके थे, लेकिन यशोदा कुछ भी नहीं बोल पाई, केवल अपने पति के मुख से श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुन भर रहे थे, सुन रहे थे, आंसू बह रहे थे, स्तनों में दूध चू रहा था। इस तरह से यह दिखाया गया कि नंद बाबा से भी अधिक प्रेम की बाढ़ मां यशोदा में थी, इसीलिए तो कुछ भी नहीं बोल पाई। उद्धव जी इस दृश्य को देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले जो भी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं यशोदा और नंद बाबा, वात्सल्य भाव में और माधुर्य श्रृंगार भाव में श्री गोपीजन। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि ये भक्ति के सब कई स्तर हैं, कई रूप हैं। पहला है शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो मधुर रस भगवान को अपना प्रियतम मानना, ये सबसे श्रेष्ठ है, ये परिपूर्ण है, लेकिन इसके लगभग समकक्ष है वात्सल्य भाव। इसमें अत्यधिक ममता है भगवान के प्रति, केवल एक चीज थोड़ा सा कम रह गया, वो है सर्वात्म समर्पण, जो मधुर भाव में ये आता है, और सब चारों गुण तो रहते ही हैं। तो इस तरह से मधुर भाव परिपूर्णतम भाव है भगवान के प्रति, लेकिन भगवान को अपना पुत्र मानना और पुत्र मानकर उनके योग क्षेम की चिंता करना, यह बहुत उन्नत भाव है। इसीलिए इसे चौथा भाव कहा गया है, चौथा वात्सल्य भाव, इसके बाद मधुर भाव। श्री उद्धव जी इसको देख रहे हैं। आप पहले सुने थे कि उद्धव जी सबसे बड़े विद्वान हैं, भगवान के भक्ति के विषय में जानते थे कि भक्ति के सब स्तर हैं ऐसे ऐसे, लेकिन अपने आंखों से आज देख रहे हैं कि भक्ति किसे कहते हैं, वात्सल्य भाव क्या है। इतना ऐश्वर्य वर्णन के बाद भी, जो स्वयं ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे नंद बाबा, लेकिन उनका भाव शिथिल नहीं हुआ। जो किसी भी काल में शिथिल न हो उसी को तो भाव कहते हैं और अनुराग कहते हैं। जो राग दिन पर दिन बढ़ता जाए, नित्य नूतन रहे, नव नवायमान रहे, उसको अनुराग कहते हैं। यह अनुराग की परिभाषा है। तो यहां पर उद्धव जी देख रहे तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयः वीक्ष्यानुरागम परमम नंदमाहोधवो मुदा। हे महाराज परीक्षित, इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, तयो हो नंद जसोदयो हो भगवती कृष्णे इत्थम अनुरागम इत्थम परमम अनुरागम वीक्ष्य उद्धव नंदम आह। तयोर इत्थम भगवती कृष्णे नंद जसोदय। वास्तव में ये सब श्लोक ऐसे हैं जिनकी व्याख्या करना भी कठिन है। इत्थम शब्द दिया गया है यहां पर, इत्थम माने ऐसा। उद्धव जी ने देखा, भक्ति के सिद्धांत को सुने थे, स्वयं भगवान के साथ ही रहते थे, उनके मित्र हैं। जैसे छह गुण को पहले वर्णन किया गया, वृष्णि नाम परवरो मंत्री कृष्ण सदैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्व। वे जब देखे इस तरह का अनुराग, इत्थम अनुरागम, इस तरह से नित्य नवीन होता हुआ अनुराग, कृष्ण के प्रति राग परमाशक्ति, कृष्ण में अनुराग देखे, कृष्ण में भगवती, भगवती का अर्थ है भगवान में, भगवान में अनुराग। जो छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और ब्रह्मा शिव आदि जिनके चरण नख की पूजा करते हैं, जिनके चरणों के दास हैं, ऐसे श्री कृष्ण में जो सबके पूज्य हैं, सबके पालन करता है, सबको बस में रखते हैं, ऐसे भगवान में इत्थम अनुराग, इस प्रकार का अनुराग, उनको पुत्र मानना, जो जगत के ईश्वर हैं, जगत में सबको वही पैदा किए हैं, लेकिन उनके प्रति यह भाव कि ये हमारे पुत्र हैं, भगवती कृष्ण इत्थम परमम अनुरागम, परम अनुराग, सर्वश्रेष्ठ अनुराग देख करके उद्धव जी को बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्न हुए और वे मानने लगे कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैं ब्रज में जो आया और नंद महाराज और यशोदा जी से मेरी भेंट हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, बहुत प्रसन्न थे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखे हैं कि यद्यपि चाहिए यह था कि नंद यशोदा के दुख को देख करके उद्धव जी भी रोए, दुख होने की बात है ना, लेकिन उद्धव जी बहुत आनंदित थे। ये नंद बाबा और यशोदा जी को सुख देने गए थे, समझाने गए थे, अगर ये भी उनके साथ रोने लगे तो क्या समझाए होते। आखिर ये सबसे बड़े विद्वान हैं, कृष्ण के सखा हैं। भगवान ने कहा था कि जैसे उद्धव मेरे संदेश द्वारा और अपने वाक चातुर्य से जैसे भी हो मेरे माता पिता को सुख देना, समझाना। तो जब नंद महाराज रो रहे थे, यशोदा भी वहीं पास में बैठी थी, रो रही थी, झरझर आंसू निकल रहे थे, तो क्या उचित था कि उनके दुख को सुन करके और उद्धव जी भी जा करके रो में गला पकड़ करके, तो क्या समझाने गए थे। एक तो यह बात थी कि वे समझाने गए थे, सुख देने गए थे, तो स्वयं रोने ठीक नहीं थे, और रोने रुलाई आवे तब न रोए आदमी, रुलाई आ नहीं रहे थे। स्त्रियों जैसा झूठ मूठ के कोई रोती है तो वो भी रोने लगती है गला पकड़ कर, रुलाई आवे चाहे न आवे ऐसे। ऐसा उद्धव जी करने नहीं गए थे। एक तो उनको रुलाई आ नहीं रही थी, वे तो परम आनंद में हो गए कि ये दिव्य भगवत प्रेम का मैं जो स्तर देखा, नंद यशोदा वैसे मैंने प्रेम देखा वसुदेव जी में और देवकी में। लेकिन आगे वो कहेंगे कि वो प्रेम श्लाघ्यतर है, लेकिन नंद यशोदा का प्रेम तो श्लाघ्य तमौ, सबसे श्रेष्ठ, प्रशंसनीय है, सबसे श्रेष्ठ भगवान के प्रति पुत्र भाव। तो उनको आनंद आ रहा था, यद्यपि नंद जसोदर दुख में थे लेकिन उद्धव जी जानते थे कि भगवान के विषय में जो दुख होता है, प्रेम है, रोना या शरीर में विकार, वाणी में विकार जो भी, ये तो परम भाग्य की बात है। इसलिए वो दुख का अनुभव नहीं कर रहे थे, वो सुख का अनुभव कर रहे थे। नंद जसोदा के परम प्रेम को देख करके वे सुखी थे और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि बहुत अच्छा किए श्याम सुंदर हमको यहां भेजे ब्रज में। अभी तो नंद जसोदा का भाग्य देख रहे हैं, गोपी जनों से जब भेंट होगी तो उनके चरणों में ही लौटने लगेंगे, चरण धोली में। वो तो और श्रेष्ठ था, परिपूर्णतम था। इसलिए उद्धव जी स्वयं विकलता व्यक्त नहीं कर रहे थे, परम आनंद में थे। नंद बाबा जब इस तरह से रो रहे थे, चुप हो गए, बोली नहीं निकल रही थी। अब बोली नहीं निकले और दांत लग जाए तो लोक में तुरंत पानी लेकर दौड़ेंगे, छींटा देंगे मुख पर, दांत उनका खोला जाए, है ना, दांत लग जाता है। ये दशा नंद बाबा की थी, दांत नहीं लगे थे लेकिन बोली नहीं निकल रही थी, आंसू गिर रहे थे, जसोदा रो रहे थे। उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके भाग्य की सराहना करते हुए उद्धव जी कहने लगे, लेकिन उद्धव जी बहुत प्रसन्न थे। मुदा शब्द का अर्थ ही नंदम आह, नंद बाबा से बोले। यहां पर दोनों से बोले ऐसा नहीं कहा गया, नंद जसोदा से बोले ऐसा नहीं कहा गया, कहा गया नंदम आह वाच, नंद बाबा से बोले। क्योंकि जसोदा जिसे क्या कहेंगे, वो बेचारी तो इतना रो रही थी, दुख में थे, वो तो सुनते ही नहीं। या नंद बाबा के साथ वो भी बैठी है तो एक ही के प्रति कहने लगे, मां जसोदा से कुछ नहीं कहे, जबकि भगवान ने कहा था कि मां से ये बात कहना है कि जब से मैं वृंदावन से आया मथुरा तब से मुझे कोई कन्हैया नहीं कहा। कन्हैया एक अरेर मारना है, कृष्ण नाम को ही कन्हैया कहते हैं। कृष्ण नाम यह सुनो गर्ग ते कान कान कही बोले। नगरीदास जी ने लिखा है कि कृष्ण नाम ब्रजवासियों ने सुना, नंद बाबा ने सुना, तो कृष्ण शब्द कहने में थोड़ा पटाह लगता है। महामंत्र भी जपते हैं तो राम राम तो ठीक से उच्चारण होता है, कृष्ण किन 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 कहकर पार करते हैं। कोई कोई लगा ऐसे जप करते हैं, साफ है नाम का उच्चारण करना कठिन होता है। कई लोग ऐसे करते हैं, किस 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 भी कर देते हैं। इसलिए पंजाबी लोग तो किशन ही कहते हैं, किशन, कृष्ण नहीं कहते। तो ब्रजवासी सुने कृष्ण, तो नंद बाबा ने सुना, इसके बाद उन्होंने बताया इसका नाम कृष्ण है, कृष्ण है, तो लोग फिर कनुआ कनुआ कहने लगे, कान है कान, इसका कन्हैया कन्हैया, अरे मार कर, अरे कन्हैया, कन्हैया मतलब कृष्ण। तो भगवान कहे उद्धव जी से कि जब से मैं वृंदावन से आया मथुरा में कोई मुझे कन्हैया नहीं कहा, और किसी दिन सवेरे मुझे कलेवा नहीं मिला माखन रोटी का, और वहां खा भी नहीं सकते थे, कोई माखन रोटी नहीं दिया, और शाम को धारोष्ण दूध नहीं मिला मुझे गाय का। अब तुम्हें नियम है खाने का, भाई 2 बजे खाइए, 3 बजे खाइए, और तब तक राम राम कीजिए। साधुओं में सब नियम है, और बड़े बड़े लोगों में भी खाने का टाइम भी नहीं रहता है उन लोगों को। खास करके जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, राजा होते हैं, तो उनको खाने का टाइम नहीं रहता। एक व्यक्ति एक दिन कहा किसी दूसरे साधु से, हमसे नहीं, कि आप यहां आइए, यहां आइए। साधु कहा तो वो व्यक्ति कहा, महाराज वहां आने की बात आप कह रहे हैं, मरने की भी फुर्सत नहीं है हमको। मरने की भी फुर्सत नहीं है, वहां नहीं आ पाऊंगा मैं। कौन सुना रहा था हमको याद नहीं, मरने की भी फुर्सत नहीं, तो खाने की फुर्सत कहां से होगी। सवेरे किसी तरह चाय और चैट करके अब दिन भर रहते हैं, शाम को खाते हैं। वो पीते थोड़े हैं, वो पीना जब एक दो किलो पिए तब ना पीना कहा जाएगा। चाय फूक 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 कर लगता है कोई दवाई ले रहे हैं। चाय बेचने वाले कप, प्लास्टिक का गिलास या मिट्टी का बर्तन और छोटा करते जा रहे हैं, और छोटा करते जा रहे हैं, और दाम उसका बढ़ाते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। सार्वभौम जी कहते थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि आदमी को पानी पीने को मिलेगा तो ड्रॉपर से, ड्रॉपर कान में डाल दे, उससे दिया जाएगा पानी ना। अभी भी दुर्लभ होने लगा, तो बोतलों में पानी अब बंद मिलने लगा। तो हम लोग देखे हैं कि नदियों में पानी भरा रहता था, गंगा जी में सब में, लेकिन गंगा जी का पानी पीने लायक नहीं रहा, जमुना जी का तो पहले गायब हो गया, और किसी नदी में पीने लायक पानी नहीं। नहीं पीने लायक पानी भी नहीं है, ये भी नदियां सूख गई, बोतल में पानी बंद कर करके और डीजल के भाव में बेचा जा रहा है। जो शुरू में पानी बिकने लगा तो डीजल का भाव और पानी का एक ही था, इस तरह से पानी दुर्लभ होते हैं। हमें इससे कोई तात्पर्य नहीं है, भगवान ये कह रहे हैं कि हमको किसी ने कन्हैया नहीं कहा, ये नहीं कहा, नहीं कहा। हाँ ये कहा, तो सवेरे खाने को नहीं मिलेगा तो एक दुख ही है, ये मतलब था। भगवान कहे कि हमको मथुरा में कभी ठीक से खाने को नहीं मिला है, नहीं मिला। मां यशोदा के प्रेम का स्मरण कर रहे थे, उद्धव जी इनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं उनके अनुराग को देखकर। उद्धव उवाच, उद्धव जी कहते हैं, ज्वाम श्लाघ्यतम नूनम देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरौ जप कृता मतिरिदृशे। हे मानद, उद्धव जी कहते हैं नंद बाबा के लिए, हे मानद, हे मान देने वाले हैं, सम्मान करने वाले। उद्धव जी ब्रज में गए हैं तो सबसे बड़ा सम्मान उनका है कि उनके सामने जो भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट हुआ नंद बाबा में और यशोदा जी में, यही सबसे भारी सम्मान था उद्धव जी का, सबसे बड़ा धन उनको मिला ब्रज में जाकर। सम्मान इसी तरह से होता है, कोई किसी का आदर किया, आदर में अच्छा से खिलाया पिलाया, बहुत सुंदर वचन बोला। और सम्मान में आजकल तो कई तरह का सम्मान होता है, कोई दुल्हा गया है ससुराल तो उसके लिए ड्रामा करना, नाच दिखाना और सब तरह भड़क जो भी है। कि उद्धव जी के सामने ब्रज में क्या मिला, भगवान कृष्ण के प्रति अद्भुत अनुराग, अद्भुत पुत्र भाव, स्नेह। तो इसी को श्री उद्धव जी कहते हैं कि हे मानद, आपने मेरा बड़ा सत्कार किया। वास्तव में इस लोक में जितने भी जीव हैं, देहधारी हैं, और देहधारियों में भी जो भक्त हैं, भगवान कृष्ण के, उन भक्तों के बीच आप दोनों श्लाघ्य तमव हैं, सर्वाधिक प्रशंसनीय हैं। श्लाघा का अर्थ है बड़ाई, सबसे धन्य आप लोग हैं, आपका जीवन सबसे धन्य है। इसी प्रसंग में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि देवकी वसुदेव का भी पुत्र भाव है भगवान में, लेकिन वह पुत्र भाव कभी कभी शिथिल देखा जाता है, इसलिए वो श्लाघ्यतर हैं। और नंद जसोदा श्लाघ्यतमल, श्लाघ्यतम है। इह का अर्थ है भक्तों के समाज में, सामान्य जीवों के लिए नहीं कही जा रही है बात, अन्य सब जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में भी जो वेद के अनुसार चलते हैं, कर्म करते हैं, योग करते हैं, ज्ञान में रहते हैं, वे श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान के भक्त कृष्ण के। पर भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ जीवन है तो नंद जसोदा का जीवन, श्लाघ्यतम। नारायणे अखिल गुरव जत कृता मतिरिदृश, अखिल गुरव सबके जो पिता है, मां है, सबके पूज्य है, सबके जन्मदाता है, ऐसे भगवान नारायण में, कृष्ण में आप लोगों ने ऐसी मति की है, ऐसी आपकी मान्यता है, उनको आप पुत्र रूप में ही मानते हैं और इतना उनके लिए चिंतित रहते हैं, अतः आप ही समस्त देहधारियों में, देही नाम देहधारियों में श्लाघ्यतम है। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बोल रहा है, भगवान का प्रतिनिधि, किसका जीवन धन्य है जो इस प्रकार से भगवान कृष्ण से कोई संबंध स्थापित करके और भजन करता है। संबंध में भी यदि पुत्र मानता है तो और अधिक श्लाघ्यतर है, श्लाघ्य है। नंद जसोदा तो इसमें श्लाघ्यतम है। भगवान को भगवान मानना, ईश्वर मानना, और इस भाव से ही कोई उनको प्रणाम करे, उनका जप करे, तो उसी का जीवन धन्य है। और भगवान के साथ अपना पर्सनल रिलेशन मान करके, स्थापित करके कोई भजन करे तो तुम कहना ही क्या। और भगवान वास्तव में अपने हैं, इस जगत में हम लोग कितना क्षणिक और क्षणिक तथा वास्तव में जो संबंध नहीं है वो संबंध स्थापित कर लेते हैं इस संसार में, देखते ही हैं। जन्म के बाद कोई मां होती है, पुत्र होता है, पिता होता है, ये भी जो संबंध है यह क्षणिक ही है, और जड़ देह का संबंध होता है, और विवाह आदि के द्वारा संबंध होता है, पत्नी बनती है और बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो ये सब संबंध भी कोई नित्य संबंध नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये देह तक के संबंध रहेंगे। देह तक, देह के अंत तक संबंध निभ जाए तो इसको पक्का माना जाता है, पक्का संबंध है। पति पत्नी का संबंध है देह के अंत तक रह गया तो ठीक, पर देह जाने के पहले ही कितने लोगों का संबंध खत्म हो जाता है। देह अभी रहता है, जीव भी रहता है, और वो भी जीव दूसरे देह में है संबंधित, तो फिर भी कोई न कोई खटपट हो ही जाती है, बिगड़ जाता है संबंध। पर भगवान के साथ जो जीव का संबंध है वास्तविक है, स्वाभाविक है, कोई ऐसा नहीं कि किसी पराये व्यक्ति के साथ, जड़ वस्तु के साथ संबंध हो रहा है। भगवान चिन्मय है और जीव भी चिन्मय है, ज्ञान घन भगवान है, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ वो स्वाभाविक है और वो कभी भी टूटेगा नहीं, किसी भी शरीर में जाएंगे टूट नहीं सकता। और भगवान के धाम में स्वरूप प्राप्त होता है वो तो उसी स्वरूप से शरीर से चलने लगता है, बाकी शरीर बदले भी किसी कारण से दूसरे जन्म में जोनी में जाना पड़े फिर भी भगवान के साथ वो संबंध टूट नहीं सकता है। भगवान सब शरीरों में साथ रहते हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में बसते हैं। तो बहुत भाग्यशाली और समझदार वे हैं जो ऐसे भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं, इन्हीं का जीवन वास्तव में सफल है। और उसमें भी भगवान को अपना पुत्र माने या प्रियतम माने स्वामी माने तब तो कहना ही क्या। और उसमें भी नंद जसोदा का जो भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, यही जीवन का फल है। इसीलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि जुआम श्लाघ्य तमऊ नूनम देहि नामि हे मानव। नूनम का अर्थ है निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप दोनों श्लाघ्यतम हैं। उद्धव जी इनको सबसे बड़ा भाग्यशाली कह रहे हैं। नंद बाबा जसोदा जी ये सोचने लगे कि हमारे जैसा अभागा कोई नहीं है, हम पुत्र के विरह में मर रहे हैं और ये आकर के बक रहा है कि आप सबसे भाग्यशाली हैं। ये तो ये सोच रहे थे कि ये कौन पागल मच्छर से आ गया है, हमारे से ज्यादा भाग्यहीन कौन है कि हमारे पुत्र रत्न चले गए मथुरा और हमको भाग्यशाली कह रहा है। कवि ने इस बात को लिखा है, नंद बाबा ऐसा नहीं सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने यहां तक तो कभी कहा है कि मैंने कहा कि इसको भगाओ वृंदावन वृंदावन से मथुरा जाए, कौन आकर के बक रहा है, हम मर रहे हैं अपने पुत्र के विरह में और कह रहा है कि आप भाग्यशाली हैं, आपका जीवन धन्य है, सबसे अधिक धन्य है। उद्धव जी इस तरह से बोल रहे हैं, भगवत प्रेम की महिमा पर प्रवचन कर रहे हैं। भगवान ने अपने मित्र को भेजा है ब्रज में जो भगवान की भक्ति की महिमा को पूर्ण रूप से जानता था, स्वयं भक्ति में लगा हुआ था। उद्धव जी विवाह नहीं किए, सदा भगवान के साथ रहते थे। जब कुरुक्षेत्र में आए भगवान महाभारत युद्ध के लिए तो उस समय भी उद्धव जी साथ में रहते थे। वो भगवान को बुद्धि देने के लिए थे और सात्यकी और अर्जुन बॉडी गार्ड रहते थे भगवान के, सबसे बड़े धनुर्धर सबसे बड़े धनुर्विद्या के विशारद, ये लोग अंग रक्षक थे भगवान के, साथ में रहते थे धनुष बाण लेकर। और उद्धव जी भगवान को सहायता देते थे, कभी कहीं भगवान की बुद्धि काम नहीं की तो वहां पर राय देने के लिए। क्या सुंदरता है भगवान की लीला में, अपना मंत्री रखे थे, किसी किसी अवसर पर भगवान की बुद्धि काम नहीं करती थी तो उद्धव से पूछते थे क्या करना चाहिए, तो उद्धव जी तत्काल उत्तर देते थे ये करना चाहिए। एक बार की घटना है कि हस्तिना में भगवान के धाम में द्वारका में सुधर्मा सभा में जरासंध के कैद किए हुए राजा पत्र भेजे भगवान को, दूत भेजे बिहार से कि हमको जरासंध बहुत दुख दिया है, आपका भक्त समझ करके हमको जेल में बंद कर दिया, केवल हम लोग उसको प्रणाम नहीं किए, उसके सामने झुके नहीं, इसी से हम लोगों को बांध बांध करके अब भैरव की बलि देना चाहता है, सबको काटना चाहता है। हे द्वारकानाथ आप आइए हमारा उद्धार कीजिए। अभी दूत बोल करके लगभग खत्म कर रहा था तब तक देवर्षि नारद जी आए उसी सुधर्मा सभा में। तो देवर्षि नारद जी का भगवान ने उठकर स्वागत किया, सब लोग स्वागत किए। इसके बाद पूछे कैसे आए, आप तो घूमते ही रहते हैं, फ्री परिव्राजक हैं, तो अवश्य हस्तिनापुर भी आप गए होंगे। भगवान पूछते हैं आप हस्तिनापुर जरूर गए होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, सारा समाचार ठीक है, ब्रह्मा जी की सृष्टि से लेकर के इस पृथ्वी पर सब समाचार पता नहीं ठीक चल रहा है, लेकिन मैं एक संदेश लेकर के महाराज युधिष्ठिर का आया हूं। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें आपको निमंत्रण दिए, लिखित दे दिए निमंत्रण। तब भगवान के सामने ये विचार संकट आ गया, क्या किया जाए, अपने शरणागत की रक्षा की जाए पहले कि अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में शामिल हुआ जाए, क्या करना चाहिए। भगवान संकट में पड़ गए, लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम ही मेरे नेत्र हो, मुझे अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करनी चाहिए, राजाओं की, कि अपने संबंधी के यहां युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान ने कहा कि आप जो कहेंगे उचित सलाह होगा वही हम करेंगे। तो क्या भगवान अपने से नहीं समझ सकते थे क्या करना चाहिए? लेकिन भाई बहुत बड़ा नीतिज्ञ आया है स्वर्ग से पढ़ करके, उसकी बात प्रमाण होगी ना। भगवान तो अभी केवल उज्जैन में पढ़े थे और उद्धव जी स्वर्ग से पढ़कर आए थे और सबसे भारी गुरु से, सबसे बड़े पंडित से, बृहस्पति जी से। भगवान आदर दे रहे हैं। तो उद्धव जी ने कहा हमारे समझ से सबसे पहले यज्ञ में जाना चाहिए, यज्ञ वही कर सकता है, राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सारे राजाओं को बस में कर लिया। हमारी राय है कि आपको चलना चाहिए पहले हस्तिनापुर और वहां से महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर के फिर विजय करना है इधर उधर, तो अवश्य जरासंध को भी जीतना होगा। तो उद्धव जी ने कहा कि जरासंध के साथ सेना लेकर के युद्ध करना खतरनाक, सबको मार डालेगा, वो नहीं मरेगा। मेरी राय यह है कि आप जाइए गिरिब्रज और अपने साथ भीमसेन और अर्जुन को ले लीजिए और भीमसेन से उसका युद्ध कराइए और आप लोग ब्राह्मण के रूप में जाइए। ये उद्धव जी की राय थी, ब्राह्मण के रूप में जाएंगे तो ब्राह्मण को अपना सिर भी दे सकता है, इतना मानता है ब्राह्मण को। आप अपने देश में मत जाइए, सब लोग ब्राह्मण के रूप में जाएं और जाकर के उससे भिक्षा मांगिए, जब कहे कि जब वो कह दे कि हाँ दूंगा तब आप मांगिए कि हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, द्वंद युद्ध करना चाहते। तो युद्ध में आप मत लड़िएगा उसके साथ, आपसे लड़ेगा भी नहीं, वो अर्जुन के साथ नहीं लड़ेगा, भीमसेन के साथ लड़ेगा। और आप साथ में रहेंगे जब दंगल होगा, आप जब रहेंगे तो भीमसेन वध कर देंगे उसका। इतनी राय ये प्लान बना द्वारिका में यज्ञ में जाने से पहले उद्धव जी ने ये परामर्श दिया भगवान को, तो भगवान ने बहुत सराहना की, बहुत अच्छे। इसके बाद गए तो वहां जाकर के महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लिए, भगवान थे और सभी भाइयों को दिशा बांट रहे थे, तुम पूरब में जाओ राजाओं को परास्त करो, उनसे कर लो, किसी को पश्चिम में, किसी को उत्तर में, किसी को पूरब में। सब भाई धन लेकर के आए कैसे कैसे, तो भगवान अर्जुन को और भीमसेन को लेकर के गिरि ब्रज गए। गिरि ब्रज लगभग पटना के पास है, तो वहां गए। वहां का राजा था जरासंध, और पृथ्वी के जितने भी राजा थे, क्षत्रिय थे, सब उसके दास थे। अर्जुन यहां तक कहे हैं उसके लिए कि राजा जरासंध जमीन पर पैर नहीं रखता था, राजाओं के मस्तक पर पैर देकर के चलता था। यह एक भाव है कि मतलब समस्त राजा उसके चरणों की धूली के समान व्यवहार करते थे। इतना प्रचंड राजा थे जरासंध, और वो भी बीच में वेल्डिंग किया गया था, जोड़ा गया था जरा नाम की पिशाची द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। जरा ने जोड़ा था। जब उसका जन्म हुआ तो आधा आधा जन्म हुआ, एक आंख और एक हाथ, पूरा शरीर आधा, तो इसको फेंक दिया उसके मां ने, घर के पीछे कहीं फेंक दिया। तो जरा नाम की एक पिशाचिनी स्त्री थी, वो दोनों को सटाई और सटा करके कहने लगी जीव जीव जीव, जी गया। कोई भी चिन्ह नहीं रहा कि ऐसे फटा हुआ जन्म लिया था। पर इतना कमजोर व्यक्ति भी आगे चल करके जरासंध हुआ और सारे पृथ्वी को बस में रखा था। कंस, शिशुपाल, ये सब इसके चेला थे। कंस तो खास दमाद ही था, शिशुपाल, दंतलवक, प्रसाल, रुक्मी, ये सब इसके अधीन थे, चेला थे। तो भगवान गए गिरि ब्रज, वही कथा कह लेते हैं, तीनों ब्राह्मण के वेश में थे। तो गए जाकर के सीधे गेस्ट हाउस में ठहरे, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं था, अतिथि शाला में ठहरे। तो नियम से अतिथि अतिथि भवन में जाता था जरासंध पूछने के लिए कौन अतिथि आए हैं, क्या स्वागत किया जाए। तो गया तो देखा आज विलक्षण अतिथि आए हैं, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण आए हैं। भगवान भी ब्राह्मण का तिलक किए थे। ब्राह्मण का तिलक मतलब ऐसे सीधा ऊर्ध्वपुंड होता है, त्रिपुंड, ये सब ब्राह्मण का तिलक नहीं है। ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। पहले के सब ब्राह्मण वैष्णव होते थे, काशी में जाइए तो सब त्रिपुंड, ऐसे तिलक ऐसे होना चाहिए, तो इसको ऐसे ऐसे आसानी से उस उंगली की छाप उखा लेते हैं इधर, कोई मंत्र नहीं कुछ नहीं। आजकल मैंने जो देखा है तो लोग बना ऐसा ब्राह्मण बना देते हैं, लेकिन ऐसे ब्राह्मण नहीं बने थे, ऊर्ध्वपुंड धारण किए थे। तो गए ठहरे, वो आया तो इसके बाद प्रणाम किया, वो राजपूत था इसलिए ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद स्वागत किया, पूछने लगा तो हम तो स्वयं पाकी हैं कि मैं बनवाऊं। पहले वो कहे कि हम लोग बाद में देखेंगे, भोजन जहां तहां नहीं किया जाता है, वो लोग भगवान बोल रहे। तो मैंने सिखाया था भीमसेन और अर्जुन को बीच में बोलना मत, हमको बोलने दे, कोई गड़बड़ी हो जाए हम बोलेंगे। तो भगवान बोले महाराज हम लोग बहुत दूर देश से आए हैं, मतलब हस्तिनापुर मथुरा ये सब दूर ही है, द्वारका वहां से आए हैं, और हम आपसे कुछ दान मांगने आए हैं। तो उसने कहा ठीक है हम आपको देंगे, जो भी चाहिए आप मांगिए। ब्राह्मण हमको बहुत प्रिय है। जब कह दिया कि हम देंगे तब भगवान ने कहा देखिए महाराज, और फिर बाद में सोचने लगा कि कहीं न कहीं इनको मैं देखा हूं, जरासंध सोच रहा है 18 बार तो मथुरा में ही भेंट हुई थी, कहीं देखा हूं, चेहरे से पता चल रहा है, और भगवान कृष्ण का, अर्जुन का, भीमसेन के कलाई को देखा कि इस पर धनुष के प्रत्यंचा की रगड़ है, धनुष जब चलाते हैं तो डोरी जो होती है यहां से टकराती है, तो दिखा बाह खुला थे, लगता है कि ये लड़ाकू हैं, कोई क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, देह से पता चल रहा था कि ये क्षत्रिय है। तो फिर सोचने कोई भी हो, अगर क्षत्रिय भी होंगे पर हमारे पास ब्राह्मण बन करके आए हैं तो मैं ब्राह्मण उचित स्वागत करूंगा, कोई बात नहीं, अरे हमारा क्या बिगड़ेगा, हमको यही करना चाहिए, हमारा धर्म है अतिथि की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, जैसे बलि महाराज ने किया, वो विष्णु आया था भिखमंगा बन करके, वामन बन करके, लेकिन जस तो बलि का ही बढ़ा, वामन का क्या जस बढ़ा, भीख मांगने से जस बढ़ता है। सोच यदि वामन भगवान राज मांग लिए बलि से, बलि के गुरु ने बताया कि ये विष्णु है, पर जान बुझ करके भी बलि महाराज ने दे दिया, वैसे ही मैं हूं, मैं जान गया कि ये ब्राह्मण नहीं है क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण के भेष में आखिर आए हैं तो कुछ हमारे भय से न है, तो कुछ चाह होगी, लालसा होगी उसको मांगने के लिए आए, तो निर्णय करता है कि ये अगर हमारा सिर भी मांगेंगे तब भी मैं दे दूंगा। सोचने लगे, तब भगवान ने कहा महाराज हम अन्न के भूखे ब्राह्मण नहीं हैं, हम भोजन के लिए नहीं आए हैं, और हम ब्राह्मण हैं नहीं वास्तव में, ये मैं आपका प्रसिद्ध दुश्मन कृष्ण हूं, आप मुझे पहचानिए, और ये जो मोटे शरीर वाले हैं ये हमारे फूफा के दूसरे पुत्र हैं, युधिष्ठिर महाराज के बाद, इनका नाम आपने शायद सुना होगा भीमसेन, इनका नाम, और ये जो उनसे पतले शरीर वाले हैं ये तीसरे भाई हैं, इन्हीं के सहोदर भाई हैं, भीमसेन के भाई, तो हम आए हैं यहां आपसे युद्ध की भिक्षा मांगने, और आपने कहा ही है कि हम देंगे, इतना सुनते ही ठठा करके हंसा जरासंध, खूब हंसने लगा, अरे तो ये नाटक क्यों किए हो। मैं सोच रहा था कि ये लोग क्षत्रिय हैं ब्राह्मण नहीं है, युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं, तो उसने कहा युद्ध की भिक्षा तो ठीक है मैं तुम लोगों को दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे साथ लड़ने में हमारी बेइज्जती है, तुम क्षत्रिय में यदुवंश में जन्म लेकर के अपनी राजधानी मथुरा छोड़कर भाग गए हमारे डर से, तुम्हारे साथ तो मैं लड़ूंगा नहीं, हमारी बहुत नाक कट जाएगी तुम्हारे साथ लड़ने में। अच्छा, ये जो पतले शरीर वाले हैं ये आयु में छोटे हैं, इनके साथ भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये हमारे हमसे बल में बहुत कम है, तो अपने से निर्बल के साथ नहीं लड़ना चाहिए, जो जोर हो अपना एक समान बलवान हो उसके साथ लड़ना चाहिए, ये भीमसेन हां इनके साथ मैं युद्ध करूंगा, तुम दोनों देख सकते हो, तुम्हारे सामने भगवान कृष्ण को तो इतना हीन कहा कि तुम तो डरपोक हो, तुम क्या मेरे सामने टिकोगे, इसलिए तुम किनारे हो, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करूंगा, ये भीमसेन है ये मेरे समान बल वाले हैं, इनके साथ युद्ध करूंगा, इतना कह करके, और तो पूछा कि पहले खा पी लो इसके बाद, ठीक है क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय भी खाना चाहिए ना, खिलाया पिलाया खूब अच्छा से, स्वागत सत्कार किया। उसके बाद भीमसेन को कुछ देर के बाद एक गदा दिया, दो गदा लाया, गदा युद्ध करना था, और कहा कि ले लीजिए जो गदा आपको चाहिए। एक ही समान गदा थे, तो एक भीमसेन लिए एक ले करके और वहां के स्टेडियम में दोनों गए। जनता तो पहले से जुटी थी, भरा था सारा समाज का, युद्ध होने वाला है राजा जरासंध का युधिष्ठिर के भाई से। युद्ध होने लगा, युद्ध निर्विशेष हो रहा था, कोई जीत नहीं रहा था, कोई हार नहीं रहा था। लड़ते लड़ते गदा का वार करते थे एक दूसरे के शरीर पर, तो दोनों गदा ही टूट गई, हाथ नहीं टूटा, गर्दन नहीं टूटा, गदा ही टूट गई। इतने विलक्षण वीर थे लोग, गदा में आपस में रगड़ होती थी लेकिन शरीर पर आघात भी वज्र के समान आघात हो रहा था। गदा टूट गई, जब गदा टूट गई तब हाथ से युद्ध करने के पहलवानी, कई गदा टूटी, वही केवल दो ही नहीं, कई गदा टूट गई, तो हाथ से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 27 दिन बीत गया, एक दिन रात में भीमसेन कहे कि भैया मैं पार नहीं पाऊंगा जरासंध से। तो भगवान ने रात में कथा कहा कि अरे ये जोड़ा हुआ व्यक्ति, इसको केवल फाड़ना है किसी उपाय से, किसी उपाय से फाड़ना है, और मैं युद्ध के समय रहूंगा, मैं एक सीख लेकर के चीरूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो किसी तरह से उसको पटक करके एक टांग ऊपर खींचिए और एक टांग को पैर से दबा लीजिए और खींच दीजिए, वो फट जाएगा। उसके जन्म की कथा को सुनाया भगवान ने। तब 28वें दिन युद्ध में भीमसेन गए, युद्ध होने लगा, पसीना पसीना हो गए भीम, कोई अवसर नहीं मिल रहा था, लेकिन भगवान ने वहां थोड़ा इशारा किया, वे पटक दिए जरासंध को पकड़कर। पटकते ही अपने एक पैर से उसका एक पैर दबा लिए, एक पैर को जमीन पर रखे थे और दूसरे पैर को हाथ से ऐसे ले करके और तुरंत खींच दिए, फट गया, और एक टुकड़ा को उन्होंने फेंका दूर, पूरब एक को पश्चिम, जिसे फिर जुड़ने न पा रहे। उसके बाद हाहाकार मच गया, अरे जरासंध महाराज मर गए, इसी जनता हाहाकार करने लगी। लेकिन अब हाहाकार करने से क्या होगा, जरासंध को जो मार दिया उसके सामने अब कौन आने वाला था। और भगवान कृष्ण और अर्जुन खूब खुशी में उछलने लगे, महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा ही समझो। 20,000 राजाओं को कैद किया था, फिर भगवान कारागृह में गए, उनको मुक्त किए, ये सभी राजा भगवान का दर्शन किए, भगवान ने उनका स्वागत किया। उसके पुत्र का नाम था सहदेव, जरासंध के पुत्र का, तो वो सभी राजाओं को पोशाक दिया, सवारी दिया, अच्छा से खिलाया पिलाया, लोग भगवान की स्तुति किए और सभी प्रोमिस किए कि हम महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आएंगे। सभी राजा 20,000 राजा तो आए और यज्ञ में सहायता देने के लिए अनेक सामग्री लाए, धन लाए, पैसा लाए, ये लोग भाग लिए थे। तो इस तरह से ये कथा आ गई। मूल कथा यह है कि उद्धव जी श्री कृष्ण को परामर्श देते थे और भगवान बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करते थे, स्वयं पूछते ही थे। यह भी एक माधुरी है भगवान की लीला की, किसी व्यक्ति को अपने को ही पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान सब तरह से पूर्ण है, सभी काल और देश के ज्ञाता हैं, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए सब जानते हैं, फिर भी एक बहुत ही पढ़े लिखे अनुभवी व्यक्ति का वे परामर्श लेते थे। ऐसा नहीं कि अब हम ही भगवान हैं, ये हैं, वो हैं, तो किससे क्या पूछना है। ठीक है, भगवान हैं, फिर भी पूछते थे। तो जो भगहीन है उनको क्यों नहीं पूछना चाहिए? भगवान भी पूछते हैं, राय लेते हैं, तो पूछना। ऐसे महान व्यक्ति को भगवान ब्रज में भेजे थे और ब्रज में जाकर के वो देख रहे थे नंद बाबा के प्रेम को, यशोदा जी के प्रेम को। और जो सबसे बड़ा विद्वान है, जानकार है शास्त्रों का, बृहस्पति जिसे पढ़ा है, तो जानता है कृष्ण प्रेम ही सार है। तो कृष्ण प्रेम जहां दिखाई पड़ा जिस समाज में, वहां उनकी वो प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसी प्रशंसा में बोलते हैं कि युवाम श्लाघ्य तमौ नूनम देहि नामि मानद नारायणे अखिल गुरव जत कृता मतिरिदृश। अखिल गुरु, सबके जन्मदाता, सबके पोषक, ज्ञानदाता भगवान नारायण में जो ऐसी मति की है, उनको भी अपना पुत्र मान करके और उनके प्रति ऐसा स्नेह कर रहे हैं, ईदृशी मति कृता, ऐसी मति, तो आप लोग धन्यतम हैं इस संसार में, परम प्रशंसा के योग्य है, कृतार्थ है। ईदृशी मति कृता, ये बहुत प्रेरणाप्रद वाक्य है। ऐसी मति किया भगवान के प्रति, सबके पास अपनी अपनी मति है और अपनी मति से ही कोई भगवान पर विचार करता है, भगवान क्या है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान कितना मधुर है, कितना ज्ञानी है, कितना धनी है, और उनके प्रति हमारी मान्यता जो है, उनके साथ अपने संबंध की धारणा, इसी को मति कहेंगे। तो ऐसी मति आप लोगों की कृष्ण के प्रति है, भगवान के प्रति है, तो आप धन्य हैं। अपनी अपनी मति से ही व्यक्ति भगवान की धारणा करेगा, अपने पास जैसी मति है, मान्यता है, बुद्धि है, उसके अनुसार। श्री कृष्ण के साथ तो अर्जुन ने संबंध किया, अर्जुन क्या मानते हैं कृष्ण को, युधिष्ठिर महाराज क्या मानते हैं, जसोदा जी, नंद जी क्या मानते हैं, ब्रज के सखा और भी भक्त हैं, वो अपनी अपनी मति से भगवान को मानते हैं, प्रेम करते हैं, पर नंद जसोदा की जो मान्यता है कृष्ण के विषय में सबसे श्रेष्ठ। मति की बात याद आती है तो हमें ये भी स्मरण आ जाता है, कुछ लोगों की मति है कि भगवान को पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो भगवान को एक प्रकार से गाली देना है ना। ये किस काम की मति है? भगवान के अंगों का वर्णन शास्त्र में है, उनके आंख का, उनके पैर का, उनके हाथ का, उनके वक्षस्थल का, उनके जांघ का, सभी अंगों का वर्णन है, परम सुंदर। और ऐसे भगवान के प्रति जिन मूर्खों की मति है कि भगवान एकदम निराकार है, निराकार में मुख पद्म होगा, हस्त कमल होगा, चरण कमल होगा, ये शास्त्र में वर्णन है ना, इसको कौन डिनाई कर सकता है, कौन नकार सकता है? ऐसे परम सुंदर भगवान के प्रति कोई भाव, कोई नाता तो दूर की बात रही, उनके स्वरूप को भी स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ स्वीकार भी करते हैं तो भगवान को मारने के लिए दौड़ते हैं, जैसे रावण, कंस, तो कोई भाव है ही नहीं। वहीं पर भगवान के स्वरूप के लिए उन पुत्र बुद्धि करके नंद महाराज, यशोदा इतने विकल हैं स्नेह से, और वहीं पर कंस उनसे डरता था, कंस कृष्ण से बहुत डरता था, भय बस उसका मन लगा रहा। तो खैर वे लोग भी सौभाग्यशाली थे कि भगवान के रूप को मानते थे, भले उनसे द्वेष करें चाहे झगड़ा करें, लेकिन कुछ इतने बेहुदे हैं इस संसार में, इतने डल मूर्ख हैं, जो कहते हैं भगवान का कोई रूप ही नहीं है, ये महद अपराध है। चैतन्य भागवत में बताया गया है, अगर जो ये कहता है कि भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, नाक नहीं, आंख नहीं, तो ये भगवान के अंगों को काट रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये हमारे अंगों को काट रहे हैं। कैसे ये मति हो जाती है कि भगवान का कोई रूप नहीं है? कोई ये दलील दे कि भाई हम ऐसा सुने हैं, लेकिन सुनने वाला भी, सुनाने वाला कहेगा कि हम भी किसी से सुने हैं। अंत में पूछा जाए कि कौन इस पंथ का प्रवर्तक हो गया है, कौन इस बात का प्रचार किया कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं, कौन इस बात को कहा? कोई परंपरा नहीं। परंपरा तो ब्रह्मा जी से चली है, श्री जी से चली है, और संकर्षण देव से चली है, चार कुमारों से, और भगवान शिव से। शिव जी हमेशा भगवान के रूप का वर्णन किए हैं अपनी पत्नी से, भवानी जी से, और ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं भगवान के रूप का वर्णन, वेणुम कोणंत मरविंद दलायताक्षम। ये चार जो परंपरा है आचार्यों की, इसके अलावा कोई परंपरा नहीं है। कोई बीच में सियार जैसा हुआ हुआ लिख दिया कोई किताब, बस चलो ये उसी को पढ़ते हैं, कोई परंपरा नहीं है। भगवान में ऐसी मति होनी चाहिए, जत किताब कृतम मति रिद्र से, इत्थम भावम, इत्थम अनुरागम, और ईदृशी मति, ऐसी मति। और किसके प्रति? भगवान के प्रति ऐसी मति। मैंने ये सौभाग्य की बात है कि ऐसी मति भी मैंने देखा, इस ब्रज में आकर के मैंने देखा कि भगवान कृष्ण से कैसा स्नेह होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए। ईदृशी, ईदृशी का अर्थ है कि ऐसी, बस इसके समान ऐसी ही, न सुना न देखा था पहले, ऐसी मति, उसको मैं आज देख रहा हूं। प्रशंसा करते हैं, कहते हैं ये श्री कृष्ण बलराम ये नारायण हैं, भगवान हैं, तो उसी भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं कि ये जगत के जन्मदाता हैं और इसके साथ साथ कंट्रोलर भी हैं। एतौ हि विश्वस्य च बीजजोनी रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूते सुविलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषा तैमौ पुराणौ। एतौ, ये कृष्ण बलराम हृदय में आरूढ़ हैं, कृष्ण बलराम है मथुरा में, लेकिन उद्धव जी कहते हैं एतौ, एतौ माने ये जो हृदय में स्फुरित हो रहे हैं, ये दोनों कृष्ण बलराम विश्वस्य बीज जोनी, ये दोनों निमित्त कारण हैं और उपादान कारण भी हैं। निमित्त कारण मतलब रचयिता भी और उपादान कारण वस्तु के रूप में भी। रामो मुकुंदः पुरुषः प्रधानम्, ये प्रश्न होता है बीज और जोनी तो पुरुष और प्रकृति है, प्रधान प्रकृति को कहते हैं, प्रकृति उपादान कारण है और पुरुष निमित्त कारण है। कैसे इन दोनों को कह रहे हैं कि ये बीज और जोनी है? तो कहते हैं यही दोनों पुरुष और प्रधान हैं, पुरुष और प्रकृति हैं। अच्छा, इस तरह से ये कह करके उद्धव जी ये कहना चाहते हैं कि ये जन्मदाता हैं विश्व के, विश्वस्य, विश्व में जितने भी जीव हैं, देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जितने भी जीव हैं, सबके जन्मदाता ये दोनों हैं, इस बात के द्वारा कहा गया। और यही कंट्रोलर हैं, नियंता हैं सारे विश्व के, समस्त जीवों के, ब्रह्मादि सबके, तो उसको कह रहे अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषात इमौ पुराणौ। और इमौ पुनः उक्ति कहे दो बार, पुनरुक्ति है यह, एतौ और इमौ, यही दोनों। अन्य कोई नहीं, कृष्ण बलराम ही कारण हैं, इस विश्व के जन्मदाता हैं और कंट्रोलर हैं, ये कह रहे हैं। अन्वीय प्रविश्य भूतेषु, सभी जीवों में ये दोनों प्रवेश करते हैं, और विलक्षणस्य ज्ञानस्य च ईशाते, जीव है इस शरीर से और विश्व से भिन्न है, जीव चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, चेतन है, और ये जड़ जगत शरीर आदि जो है अलग है, तो इससे वो विलक्षण है जीव। यहां ज्ञान का अर्थ है ज्ञान स्वरूप जीव, जीवस्य, श्रीधर स्वामी ने लिखा है, जीव को वही कंट्रोल करते हैं दोनों, विलक्षणस्य ज्ञानस्य जीवस्य इति, ज्ञान स्वरूप चिन्मय जीव के यही कंट्रोलर हैं। कहां भूतेषु अन्वीय, सभी शरीरों में प्रवेश करके और जीव का नियमन करते हैं, तो इस विश्व के विश्वस्थित समस्त जीवों के यही जन्मदाता हैं और यही नियामक कंट्रोलर। ज्ञानस च ईशाते, जन्मदाता तो है ही, ईशाते माने ईशन, नियमन भी करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इमो पुराणो, और इनका कोई कारण नहीं है, ये सर्व कारण कारण है, क्योंकि अनादि है। अनादि, अनादि का अर्थ होता है कि इनका कोई आदि नहीं है, इसका अर्थ है अनादि, इनसे पहले का कोई नहीं है, कृष्ण बलराम से पहले का कोई नहीं है, यही सबसे पहले के हैं, अनादि हैं और सर्वादि हैं, सबके कारण है। इमौ और एतौ, दो बार एक ही बात का प्रयोग हो रहा है, ये दोनों, तो इसके द्वारा उद्धव जी ये कह रहे हैं कि बस यही और कोई नहीं, यही कारण है। इसके निर्धारण के लिए दो बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इमौ, यही सबके हृदय में है, कंट्रोल करते हैं, सबको जन्म दिए। और अब प्रशंसा जो किए थे कि आप श्लाघ्यतम हैं, उसी के लिए फिर वाक्य कह रहे हैं, जीवन भर कोई आदमी विमुख रहे कृष्ण से, एक मिनट भी जिसका मन नहीं लगा है, पर ऐसा असंसारिक व्यक्ति भी कदाचित संजोग से, किसी वैष्णव के संग से या भगवान की कृपा से, प्राण वियोग काले, प्राण जब छूट रहा हो, उस समय यदि क्षण भर के लिए भगवान कृष्ण का स्मरण कर ले, तो वह भी इस शरीर को छोड़ करके और सीधे अर्क वर्ण दिव्य ज्योति में बन करके, भगवान का पार्षद बन करके और वैकुंठ जाता है। उद्धव जी कह रहे हैं जिनके स्मरण की इतनी महिमा है, किसी तरह से उनके साथ संजोग हो जाए, और इंद्रियों का संजोग तो छोड़ दीजिए, मन से भी यदि संजोग हो जाए और क्षण भर भी, फिर भी वो वैकुंठ जाता है। और आपका तो मन लगना क्या कहा जाए, आप तो दिन रात केवल कृष्ण में ही लगे हैं, आपका मन, आपकी इंद्रियां सब कृष्ण में लगे हैं, तो आपके श्लाघ्यता के विषय में क्या संदेह हो सकता है, आप धन्य हैं, कृतार्थ। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम निर्हृत्य कर्माशयमासु जाते पराम गतिम ब्रह्ममयोर्क वर्णः। जस्मिन, दोनों को एक में कह रहे हैं, कृष्ण बलराम को एक में, जिस कृष्ण में जनः, यह कश्चित जनः, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, यहां जन शब्द से मनुष्य ही अर्थ नहीं है, कोई भी जीव किसी भी शरीर में हो, और मनुष्यों में भी कोई किसी भी दशा में हो, लेकिन शरीर वियोग के समय, प्राण वियोग काले, प्राण के वियोग के समय, जस्मिन क्षणम मनः समावेश्य, क्षण काल के लिए, थोड़े काल के लिए भी मन को लगा दे, मन से चिंतन कर दे कृष्ण का, और मन कैसा है, विशुद्धम, यहां विशुद्धम का अर्थ है केवलम, विशुद्धम का अर्थ प्योर नहीं हुआ, केवलम अर्थ है। केवलम का अर्थ केवल मन को लगाया है। उस समय न तो भगवान के बारे में बोल सकता है, न सुन सकता है, न कुछ चल सकता है, न परिक्रमा आदि नहीं कर सकता है, शरीर इतना शिथिल हो जाता है। पर किसी तरह से यदि भगवान में मन उसका चला जाए तो निर्हृत कर्माशय मास जाती, अपने कर्माशय को दग्ध कर देता है, कर्म का कोष जल जाता है, कर्म बंधन खत्म हो जाता है और परम गति में जाती, वह परम गति को प्राप्त करता है। परम गति जीव के लिए है भगवान का धाम, इसी को परम गति हमेशा कहा गया है। तो परम गति को प्राप्त करता है क्या होकर के, ब्रह्ममय भगवत पार्षद बन जाता है, चिन्मय, और उसमें जड़ शरीर आदि नहीं रहता है, स्पिरिचुअल स्वरूप, और अर्क वर्ण और सूर्य के समान तेजस्वी बन जाता है, वो शरीर चमकता है। भगवान का जो पार्षद शरीर है बहुत चमकता है, इसलिए अर्क वर्ण कहा गया है। सूर्य जितना तेजस्वी है ऐसा तेजस्वी बन करके वह भक्त भगवान के धाम में चला जाता है। या अविशुद्धम, अ का प्रश्लेष करेंगे, जिसका अर्थ है कि यहां तक अशुद्ध मन से भी कभी चिंतन कर दिया तो पार्षद बनता है। जिनके स्मरण की इतनी महिमा है, जिनके साथ कनेक्शन जोड़ने की इतनी महिमा है, किसी भी तरह से आंख का कनेक्शन हो जाए वो तो और भाग्य की बात है, कान से कनेक्शन हो जाए उनके गुण आदि श्रवण, जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण आदि, शरीर का संजोग हुआ, पैर का से कनेक्शन भगवान के धाम की परिक्रमा, हाथ का कनेक्शन भगवान की आरती करना, या आंख से कनेक्शन दर्शन करना, पढ़ना, और फिर भगवान के संबंधी साधु जनों का स्वागत आदि, ये सब करे तब तो क्यों नहीं भगवान का पार्षद होगा। केवल क्षण भर के लिए मन का संजोग करके और व्यक्ति पार्षद हो जाता है, और दिव्य ज्योतिमय शरीर धारण करके वह वैकुंठ जाता है। यथा कथनचित, किसी स्थिति में केवल मन के साथ श्रीकृष्ण का संयोग हो जाए तो वही व्यक्ति पार्षद बनता है, भगवान के धाम जाता है, वैकुंठ जाता है, और उसको धन्य कहा गया है इस संसार में। फिर आप दोनों के विषय में मैं क्या कहूं, जिनका मन 24 घंटे और सारी इंद्रियां श्रीकृष्ण के लिए ही हैं, तो आप तो धन्यतम हैं। इस पूर्व वाक्य से इसकी संगति है। आप इस संसार, आप दोनों इस संसार में सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ कार्य आप लोगों ने किया है। आपकी बड़ाई जितनी की जाए उतनी ही कम है। तो इस दृष्टि से हम लोग विचार करें कि वास्तव में इस संसार में कौन धन्य है, किसका जीवन सफल है, कृतार्थ, तो जो कृष्ण से प्रेम करता है, भक्ति करता है, सामान्य भक्ति भी करे तो उसका जीवन धन्य है। शास्त्रों में, खासकर श्रीमद् भागवतम में, कभी भी भक्ति शून्य जीव की प्रशंसा नहीं की गई है। चाहे उसके पास धन कितना हो, या मान कितना हो, या बड़ा पद प्राप्त हो गया हो, इससे कोई प्रशंसा नहीं होती। जब भी प्रशंसा की गई है तो कृष्ण से कोई न कोई कनेक्शन के कारण, भगवान की भक्ति के कारण। तो नंद जसोदा का जो संबंध है भगवान के साथ, उनकी जो मान्यता है कृष्ण के विषय में, यही प्रशंसा, इस सबसे अधिक प्रशंसा का कारण है। कितना सरल श्लोक है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। प्राण वियोग काल का अर्थ सभी समझ सकते हैं। प्राण वियोग का अर्थ है जब सांस बंद हो जाती है, आत्मा निकल करके इस शरीर से कहीं चला जाता है। प्राण वियोग का अर्थ है कि सांस बंद, प्राण माने सांस, मरते समय या मरने पर लोग प्राण को ही देखते हैं ना, यह नाड़ी चल रही है कि नहीं, तो प्राण माने हवा का सर्कुलेशन अभी है कि नहीं, और छाती छूते हैं कि यहां पर कुछ अभी प्राण बाकी है कि नहीं, प्राण वियोग, ये होना है, होगा अवश्य। प्राण वियोग मतलब सबसे वियोग, मृत्यु सर्वहरश्चा है। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ हर लेने वाला मृत्यु हूं। मरण एक ऐसी वस्तु है, अब मरण हुआ तो सबसे डिस्कनेक्शन हो गया, सब छूट गया। घर में बच्चे छूट जाएंगे, अब चिंता नहीं रहेगी कि कैसे पढ़ेगा, कैसे एग्जाम देगा, अब आप चलिए दूसरी जगह चले जाएंगे। बच्चे अपने कर्म भाग्य से पढ़ते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन जब तक है आदमी तब तक जी नहीं मानते। कहीं थोड़ा भजन करो, भागवत में चलो, तो नहीं, अब तो उस समय सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता वही हो गए, नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, और जब चल देंगे पूरा तब कैसे चलेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए ना। जब यहां से टोटल कनेक्शन टूट जाएगा, न तो मोबाइल काम करेगा कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ पता ही नहीं होगा, मोबाइल भी यही छूट जाएगा। जिसको जिसको नंबर दिए हैं वे बेचारे नंबर लगाकर हार जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। यहीं पर मोटरसाइकिल छूटेगी, कार छूटेगी, स्त्री छूटेगी, बच्चा छूटेगा, ये देह भी यहीं छूट जाएगा, चाव लेना पड़ेगा। ये इतना नश्वर शरीर है, नश्वर सब संबंध है, इसी में आदमी पढ़ करके और परम फल, परम सुख, परम पुरुषार्थ भगवान को भूला हुआ है। अब उनके नाम जपने का व्यक्ति को समय नहीं है, और तो और केवल दो दिन चार दिन भगवान के कथा में भी आने का समय नहीं, पर एक दिन तो सब छोड़ना पड़ता है। जस्मिन जनह प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनोविशुद्ध, सब कुछ छूट जाएगा। और भगवान के भक्ति की इतनी महिमा है कि क्षणम मनः समावेश, क्षण भर के लिए, नाम अल्प समय के लिए भी यदि भगवान में मन लग गया, चिंतन हो गया, तो प्रश्न होता है कि जब मन शुद्ध होगा तब न लगेगा, इसलिए उद्धव जी कहते नहीं, अशुद्ध मन से भी, अविशुद्ध मन भोगों में भटक रहा है, संसार में आसक्ति है, पुत्र में, परिवार आदि में आसक्ति है, तो ऐसे मन से भी यदि संजोग बस किसी सौभाग्य से कृष्ण में मन लग जाए शरीर छोड़ते समय, तो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करते हैं। कहीं कहीं आपने सुना होगा कि भगवान का नाम अंत में आ जाए तो जीव मुक्त हो जाता है, तो उस समय नाम आता नहीं है। अंतिम काल का अर्थ है कि जब तक बोलने की शक्ति है तब तक बोलना चाहिए, और बोलने की शक्ति नहीं रहे तो कोई बात नहीं। जब शक्ति नहीं रहेगी तो भगवान थोड़े हिसाब लगे क्यों नहीं बोला अंत में, जब बोला ही नहीं जा रहा है तो बोलेगा कैसे। तो अंतिम का अर्थ है कि जब तक बोलने की शक्ति है तब तक बोलना चाहिए, बोल लेना चाहिए भगवान का नाम, नहीं तो एक दिन बोलेंगे बड़े लाचारी से बोलेंगे, रोते हुए बोलेंगे। इस समय तो आनंद से बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। तो और ज्यादा वृद्ध शरीर हो जाए, लाचार हो जाएंगे तो बोलेंगे, बोलिए जब फिर हरे कृष्णा, तो रोते हुए करेंगे। ऐसा नहीं कि उस रुलाई से भगवान जान जाएंगे कि प्रेम उत्पन्न हो गया, ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं अभी तो बहुत दिन जिएंगे, हम कर लेंगे बाद में, बाद में नहीं, अभी करना चाहिए जब समय है। ऐसे ये महिमा जरूर है कि भगवान का नाम, भगवान का स्मरण यदि अंत में भी आ जाए तो जीव का कल्याण तो होगा ही, लेकिन वो अंत में आएगा जब जीवन भर अभ्यास रहेगा तब। इसलिए अभी से भगवान नाम जप का, भगवान को प्रणाम करने का, भगवान का चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। चिंतन कैसे करेंगे, जब भगवान के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे तब चिंतन होगा। भगवान को देखेंगे, मंदिर में भगवान विराजमान हैं, ये भगवान का वर्णन सुनते हैं कि उनके चरण ऐसे हैं, उनके हस्त कमल ऐसे हैं, उनके केस ऐसे घुंघराले बहुत अच्छे हैं, उनके कानों में कुंडल है, उनके गले में कौस्तुभ मणि है, पीला कपड़ा पहने हैं, उनकी आंखें कमल के समान खिली हैं। इन सब अंगों का वर्णन जब बार बार आदमी सुनेगा पढ़ेगा तब ना स्मरण होगा। ऐसा नहीं कि बस बैठे स्मरण होने लगेगा। कई लोग ऐसे कहते हैं थोड़ा भगवान की पूजा कर रहे तो हाथ पैर धोकर के चुपचाप बैठ जाते। वो खैर नहीं करने वालों से वो अच्छे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं। चुपचाप बैठना ही भजन नहीं है। कुछ जप करना, भगवान को मन में चिंतन करना, सोचना उनका अंग ऐसा है, वे ऐसे हैं, वे अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, या अयोध्या से वनवास में जा रहे हैं, रास्ते में पहाड़ पर बैठे हैं, किसी शिला पर बैठे हैं लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ, इसको चिंतन कहते हैं। भगवान अपने भक्तों पर देख रहे हैं। भगवान की लीला और भगवान का रूप जरूर मन में आना चाहिए। और सबसे सौभाग्य की बात है कि भगवान का नाम जीभ पर आवे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्धव जी कह जस्मिन क्षणम जस्मिन जन प्राण विजोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम निर्हृत कर्माशय आशु जाते। आशु आशु का अर्थ तत्काल तुरंत भगवान का स्मरण किया और व्यक्ति चला जाता है भगवान के धाम में। पराम गतिम जाति पार्षद बनकर के तस्मिन भवंतौ अखिलात्म हेतौ नारायणे कारणमर्त मूर्तौ भावम विधत्ताम नितराम महात्मन किंवा वशिष्ठम युवयो सुकृत्यम। तस्मिन जिनके स्मरण की इतनी महिमा है उनमें श्री भगवान में जो सबके आत्मा है और हेतु है कारण सबके आत्मा भगवान है सब में उत्प्रोत है और सबके कारण है ऐसे नारायण में जो किसी विशेष कारण से मर्त्य स्वरूप प्रकट किए कारण मर्त्य मूर्त नारायण में आप लोग ऐसा भाव कर रहे हैं पुत्र भाव कर रहे हैं तो आप लोगों के जीवन में अब कौन सा सुकृत्य बाकी रह गया है कौन सा सुकृत्य बाकी है जो नहीं कर चुके हैं। कृत्य का अर्थ है करने योग्य। कृत्य को करने योग्य काम को जो कर चुका उसको कृत्य कहते हैं। कृत कर चुका क्या कृत्य करने लायक काम को कर चुका तो उसको कृत्य कहते हैं और या कृतार्थ कहते हैं। तो सुकृत्य क्या है करने लायक बहुत बहुत काम है। करने लायक काम है भक्ति भक्ति के अंग इसको कृत्य कहते हैं। और सुकृत्य है भगवान को अपना पुत्र मान करके या भगवान को प्रियतम मानकर स्वामी मान करके एक दृढ़ संबंध में उनका भजन करना है। भाव समन्विता है गीता में भगवान ने कहा है इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भाव के साथ भगवान का भजन करना ये सुकृत्य है सुष्ठु कृत्य है। जो कार्य करने के लिए भगवान ने जन्म दिया है वो काम करना चाहिए। नंद बाबा और श्री जसोदा जी के लिए उद्धव जी कह रहे हैं कि आपके जीवन में अब कौन सा सुकृत्य बाकी है किम वाव सिस्टम भवत युवयो सुकृत्यम। आप दोनों के जीवन में क्या बाकी है। एक ही श्लोक में भवंतव और जुयो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नंद बाबा और मां जशोदा के भाव को देख करके भवंतव कह रहे हैं आप दोनों के, इसका अनुवाद भवंतव का अर्थ है आप दोनों के। इस तरह से भाव को देख करके उनमें गौरव बुद्धि हो रही है तो भवंतव कह रहे हैं। और जुयो कहे, युवो का अर्थ है कि तुम दोनों का कौन सा सुकृत बाकी रह गया। देखिए एक ही श्लोक में बहुत आदर सूचक बोल रहे हैं भवंत आप दोनों, और नीचे बोल रहे हैं आप दोनों का कौन सा बाकी काम रह गया, कौन सी ऐसी वस्तु रही जो आप प्राप्त नहीं कर लिए। सबसे दुर्लभ कृष्ण प्रेम है, उसमें भी वात्सल्य भाव की चरम सीमा आप में है, अब क्या है आपके लिए बाकी रहा। आपका जीवन पूर्ण है, आप कृतार्थ हैं, आप कृतकृत्य हैं, आपके जीवन में अब दूसरा कोई सुकृत्य बाकी नहीं रह गया। मनुष्य जीवन मिला है भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए, वैसे किसी भी शरीर का यही फल है, लेकिन दूसरे शरीर बेकार है, उनमें भजन होता नहीं। किसी भी शरीर में भगवान का भजन होता है, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन मनुष्य शरीर में बहुत सुविधा है, पर मनुष्य शरीर में बाधा भी बहुत है। जितना भी संसार में फंसावट है मनुष्य शरीर से ही है, जितनी माया के उपकरण हैं। अब कोई गाय बैल और कुकुर सियार ये थोड़े देखते हैं टीवी, और ये थोड़े मोबाइल रखे, जितना माया का जाल है बंधन है ये मनुष्य शरीर में सुलभ है, पर ये है बड़ा दुर्लभ। इसी शरीर से भगवान का भजन होगा। दूसरे शरीर में इतनी आसक्ति नहीं है संबंधियों में किसी में। हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं तो कोई संयोग से कोई मक्खी बैठ गई तो कई स्टेशन चली जाती है, परिवार छूटा कोई चिंता नहीं है। आखिर मक्खियों का भी परिवार होता होगा ना, परिवार छूटे कोई चिंता नहीं, कोई अब मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, कहां वो छूटा कहां वो छूटा कोई बात नहीं, भगवान की सृष्टि है चलेंगे। लेकिन मनुष्य तो इतनी चिंता में रहता है, कोई अपना संबंधी यदि जा रहा हो ट्रेन पकड़ करके या बस पकड़ करके तो कहता है पहुंचते ही फोन करना है, पहुंचते ही खबर देना कि ठीक से पहुंचे कि नहीं। अरे बाप, इतनी चिंता होती है। और हमें कुछ बात सुना है, कुछ लोग घर से चलते हैं काम करने ऑफिस में, पत्नी कहती है कि तीन बार चार बार फोन करना वहां से केवल आठ घंटे में। और कभी वो फोन नहीं किया तो पूछती है तुम्हारा फोन नहीं आया, वो बेचारा बहाना बनाता है कि काम में फंस गया था या नहीं, तुमको हमारी याद नहीं आई, तुम्हारी ही याद करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया, तुम्हारी याद नहीं आई। अरे जिसकी याद करनी चाहिए, जिन परम प्रभु की, जो वही सबके पोषक हैं जन्मदाता हैं, उनके बारे में कभी नहीं पूछा जाता है भगवान की याद किए कि नहीं ऑफिस में, भगवान को प्रणाम किए कि नहीं, ये पूछना चाहिए ना। बस केवल हमारी याद किए कि नहीं। यही माया है, दूसरे शरीर में पशु पक्षी में ये सब चीज नहीं है, इतनी माया की पकड़ नहीं है। न तो कोई दूसरा जीव गांजा पीता है, न सिगरेट पीता है, न शराब पीता है, कोई कोई शरीर ऐसा है जिसमें व्यभिचार का नामो निशान नहीं है। पक्षियों में एक मुर्गा को छोड़ करके किसी में व्यभिचार नहीं है। उनका अपना जोड़ा होता है, उसी के साथ रहना है, खाना है, उड़ना है, व्यभिचार नहीं होता है। एक अद्भुत जीवन है पक्षी का। तो कोई भी दोष दुर्गुण तो दूसरे शरीर में है नहीं, सारा दोष दुर्गुण मनुष्य शरीर में है। परंतु यही शरीर सबसे योग्य है भगवान को समझने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान को देखने के लिए। दूसरे शरीर में कुछ नहीं सुन सकते हैं। कान है सबको, लेकिन यहां के गाय भैंस और कुकुर को बुला करके कहिए कि चलिए भागवत हो रहा है, सब लोग सुनिए। मन जबरदस्ती पगार में बांध दिया जाए तो कुछ बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन सुनने का कोई प्लस नहीं है। इतना वो इंद्रिया बेकार है, आंख है, कान है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर सकते। एक ही काम कर सकते हैं कि उनको प्रसाद दिया जाए तो प्रसाद खा लेंगे। एक गुण है शरीर, प्रसाद खा लेंगे। वही प्रसाद उनका बटा हुआ है, कौन क्या चीज खाएगा, सब्जी नहीं खाते हैं। कुत्ते को कितना भी अच्छा सब्जी दीजिए वो नहीं खाएगा, है ना? कुत्ते सब्जी नहीं खाते ना। और बानर को और चीज दीजिए, मिठाई या ज्यादा नमक वाला वो खाएगा नहीं, वो केवल फल खाता है। इसीलिए उनके अगर योग्य प्रसाद मिला तब तो खाएंगे, नहीं खा सकते। तो जो दूसरे जीवों की जो इंद्रियां हैं लेकिन भगवान को समझने में समर्थ नहीं। तो बुलवाइए किसी से, गाय भैंस सब जानवरों से सबका मीटिंग कीजिए और सबको बुलाकर कहिए कि हरे कृष्णा। तो बोलने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए तो बोलने वाला हार जाएगा, बुलवाने वाला, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। मनुष्य शरीर में तो बच्चा भी समझ जाता है भगवान का नाम है, भगवान की कथा हो रही है। इसीलिए बच्चे चुप भी रहते हैं। कभी कभी एक आध बच्चे हल्ला करते हैं लेकिन वो चुप रहते हैं, जन कथा हो रही है, कथा है। कथा समझ में आवे या न आवे इतनी भावना है भगवान की बात हो रही है, इसे सुनना चाहिए, सावधानी से सुनते हैं। तो ये मतलब मनुष्य के बच्चे को भी ज्ञान है, लेकिन पशुओं में बूढ़ा बैल हो, बूढ़ा सांड, बूढ़ा भैंसा भैंस, उनको भी ज्ञान नहीं है। मनुष्यों को ज्ञान है, इसीलिए बारंबार शास्त्र कहता है कि यह शरीर दुर्लभ है, इसको पाकर के भगवान को समझना चाहिए। भगवान को कैसे समझेंगे? सुनने से समझते हैं। तो अधिक जोर होना चाहिए सुनने पर। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय तो ऐसे निकालना ही चाहिए कि भगवान के बारे में सुने। और यदि सुनने का अवसर नहीं है तो भगवान का कीर्तन करें, भगवान का नाम, इसमें कौन विद्वता की जरूरत है। भगवान का नाम जपना है, बोलना है, चलते समय, खाते समय, जहां भी हैं। यह भी पाबंदी नहीं है कि इसी समय करना होगा, और कामों के लिए बहुत बंधन है। ऑफिस में बैठकर के कंप्यूटर चलाना होगा, यहां करना होगा, ऐसा नहीं कहीं भी चलते समय खाते समय कर सके। एक भगवान का नाम ऐसा है जिसके लिए कोई बंधन नहीं है, सवेरे ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, दोपहर को नाम ले सकते हैं, रास्ता चलते समय, स्कूल जाते समय और कोई काम करते समय ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इतनी बड़ी भगवान ने कृपा किया है, समय का देश का बंधन नहीं रखा, कोई संस्कार है या नहीं है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, दीक्षा लिए नहीं लिए कोई बात नहीं, दीक्षा पुरस्कार अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आ चंडाले समानंद। भगवान के नाम के लिए कोई जरूरी नहीं कि दीक्षा ले या पुरस्चरण करे, नाम कीर्तन करने के पहले पुरस्चरण करे, ये करे वो करे पूजा पाठ, बस भगवान का नाम लेना, नाम ही पूरा है। इसके कोई कोई पुरस्चर्या, पुरस्चर्या का अर्थ है कोई शुभ कर्म करना है, कि नाम जपने जा रहे हैं तो इसको कर लें, करें ठीक है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, नाम में सब गुण है, सब पूरा कर देता है। इसी में जीवन की कृतार्थता है, धन्यता है। तो फिर नंद महाराज और जसोदा के लिए क्या कहना, उनका जीवन कितना पूर्ण है, वे अपने जीवन के परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिए, तो उनके लिए कोई भी सुकृत बाकी नहीं है। किं वा अवशिष्टम युवयो सुकृत्यम, किं वा अवशिष्टम युवयो सुकृत्यम, आपके लिए कौन सा कार्य बाकी है, सब जितने भी शुभ कर्म हैं, दान तीर्थ और अतिथि सेवा आदि जो भी धर्म है, इसका फल है भगवान में प्रेम होना। तो सारा कर्म इसीलिए किया जाता है कि भगवान कृष्ण से संबंध हो, प्रेम हो, तो आपके लिए कोई सुकृत बाकी नहीं। आप सब काम कर चुके, आप सारा यज्ञ कर चुके, दान कर चुके, तीर्थों में स्नान कर चुके, सब कर चुके, लेकिन इसके बाद भी नंद बाबा को शांति नहीं मिली। फिर भी वे बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर फफक रहे थे, रो रहे थे कृष्ण की याद करके। तो उद्धव जी कहते हैं, बाबा आप चिंता मत कीजिए, आगमिष्यत दीर्घेण काले न ब्रजम अच्युत। अच्युत जो अपने वचन से कभी च्युत नहीं होते हैं उनको अच्युत कहते हैं। अच्युत जो अपनी कृपा से कभी च्युत नहीं होते, अपने संबंधियों का कभी त्याग नहीं करते, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो ऐसे अच्युत श्री कृष्ण अल्पेन अदीर्घेण कालेन ब्रजम आगमिष्यति, बहुत थोड़े समय में ब्रज में आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत। अच्युत अदीर्घेण कालेन ब्रजम आगमिष्यति, आएंगे। उद्धव जी भी कोई डेट या टाइम निर्धारित नहीं कर रहे हैं, काल की विशेषता बता रहे हैं कि अदीर्घेण कालेन, दीर्घ काल से नहीं मतलब कम समय में ही आएंगे। प्रियम विधास्यते पितुर भगवान सकृताम पति, नंद बाबा ने कहा तो अभी क्यों नहीं आया, अभी क्यों नहीं आया, थोड़े समय में आएगा तो ये थोड़े समय में और क्या करेगा। उद्धव जी कहते हैं प्रियम विधास्यते पित्रो, वसुदेव जी को और देवकी जी को भी पिता माता मानता है, माता पिता मानता है, तो उनका प्रिय करेगा, तो जब तक यहां नहीं आता है तब तक उनका प्रिय करेगा। वसुदेव जी का प्रिय, माता देवकी का प्रिय करेगा वो, क्योंकि सात्वताम पति, कृष्ण जादवों का पालक है। पति का अर्थ होता है पालक, पालन करने वाला, पाति इति पति, जो पालन करे रक्षा करे उसको पति कहते हैं। तो श्रीकृष्ण सात्वत पति हैं, जादवों के पालक हैं, और जादवों पर बहुत संकट है, यदि वो मथुरा से यहां आ जाते हैं तो जरा संध है, मारेगा सबको, बांध कर ले जाएगा, अभी जरा सन चढ़ाई नहीं किया था मथुरा पर, 18 साल तक चढ़ाई किया, एक वर्ष में एक बार गोवा में लेकर के आता था, सेना लेकर के आता था, पर सभी को कृष्ण बलराम में ही मार देते थे। 18वीं बार कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, तो उसी का संकेत उद्धव जी कर रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण इधर आते हैं तो उधर जादुओं का संकट ज्यों का त्यों बना रहेगा, वे उनके पालक हैं, तो अभी कुछ शत्रु बाकी रह गए हैं, उनका वध करके और फिर आएंगे कृष्ण, ये इस तरह से संतुलन दे रहे हैं, आएंगे और आप दोनों के, अपने माता पिता के यशोदा नंद के, आप दोनों के प्रिय करेंगे। इसका दो दो अर्थ हुआ, प्रिय क्यों नहीं आया और थोड़ा भी देर होगा तो क्यों देरी होगा, तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि अपने माता पिता को प्रिय करेंगे, देवकी वसुदेव का। नंद बाबा के सामने उद्धव जी ये नहीं कह रहे हैं कि वे आपके पुत्र नहीं हैं, आप दोनों माता पिता हैं, लेकिन वसुदेव जी को किसी ने बताया है कि उनके यहां भी कृष्ण का कभी जन्म हुआ था, इसलिए वसुदेव जी भी पुत्र मानते हैं, देवकी पुत्र मानती है। तो बार बार कृष्ण से लोग आग्रह करते तुम यहीं रहो, तुम हमारे भी बेटा थे, ये थे वो थे। पहले कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में वसुदेव जी के यहां कारागृह में, और बाद में यशोदा जी से जन्म लिए। लोक में तो यह बात है कि वास्तविक जन्मदाता मां देवकी है और पिता वसुदेव जी, और नंद और यशोदा पोषक पिता है, माता पिता है, पोषने वाले, जन्म दिया देवकी ने, पालन पोषण किया यशोदा ने, लोक में यह बात प्रसिद्ध है। परंतु वास्तविक बात है जो शास्त्रों में है कि देवकी और यशोदा ने एक ही साथ पुत्र पैदा किया, उनका मथुरा में एक पुत्र हुआ, एक पुत्र गोकुल में हुआ, भगवान ही कृष्ण दो जगह प्रकट हुए। तो मथुरा से जब वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के गए तो वह पुत्र यशोदा के पुत्र से मिल करके एक हो गया। तो भगवान ने कहीं समय में लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, और फिर एक भी हो सकते हैं, तो एक पुत्र हुआ। तो अपने पुत्र को सुला दिया वसुदेव जी ने, मां यशोदा के पुत्र में विलीन हो गया, और यशोदा को एक बच्ची हुई थी, ट्वीन संतान, जोड़ा संतान हुआ था, लड़का और लड़की, तो उन्होंने नहीं देखा कुछ लड़के को, अपने लड़के को सुलाया बेड पर और देखा कि यशोदा को एक लड़की हुई है, तो उसको उठा करके लाए मथुरा और उसी को दिखाया कंस के पास। कंस आया तो देखा, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र, ये पुत्री कैसे हो गई, विष्णु बहुत चलाक है, वो इसलिए बेटी बनकर के आया कि कंस नहीं मारेगा। ये कौन सोचने लगा है, बहुत चतुर है, बहुत धूर्त है, स्त्री के रूप में आया, तो देवकी से छीनने लगा लड़की को, छीनने लगा, वो बेचारी रो रही थी, नहीं दे रही थी, लेकिन पैर पकड़ करके खींच लिया और पत्थर पर पटका, जिस पत्थर पर वसुदेव जी कारागृह में स्नान करते थे, पटका के उम्र जाएगी, लेकिन हाथ से वो तो छूट गई कंस के, वो तो आदिशक्ति माता पार्वती जी थी, दुर्गा जी, हाथ से छूट गई और 8 भुजा में होकर के आकाश में दिखाई पड़ी, और सारे देवता स्तुति कर रहे थे, गंधर्व गुण गा रहे थे, सब लोग, फूलों की वर्षा होने लगी। माता दुर्गा ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम क्यों इन निर्दोष बच्चों की हत्या कर रहे हो, तुमको मारने वाला तुम्हारा पूर्व शत्रु कहीं जन्म ले चुका है। इस तरह से जोग माया ने भी कपट से ही बात किया, कहीं जन्म ले चुका है, जन्म तो यहीं लिया था, कारागृह में, लेकिन माता दुर्गा ने कहा कि कहीं जन्म ले चुका। तब कंस देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया, बहुत माफी मांगा, क्षमा मांगा कि हे बहन जी बहुत गलती हुई, मैं देवताओं की बात पर आपके पुत्रों की हत्या कर दी। देवता भी झूठ बोलते हैं, मैं तो जानता था कि केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं, लेकिन देवताओं के समाज में भी झूठ प्रवेश कर गया। अब तक देवता कभी झूठ नहीं बोले हैं, अभी भी कलयुग चल रहा है फिर भी देवता झूठ नहीं बोले, और कलयुग पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं है। तो हम जानते थे कि देवता सत्य बोलते हैं, लेकिन हमसे झूठ बोले, कहे कि विष्णु जन्म लेगा, तब तक हमारी इष्ट देवी दुर्गा जी जन्म ले ली। देवता झूठ नहीं बोले हैं, भगवान जन्म लेकर के चले गए। कंस अपनी बुद्धि लगा रहा है कि नहीं देवता झूठ बोलते हैं। इसी तरह से कुछ लोग अल्पज्ञ लोग होते हैं तो कहते हैं शास्त्र में गलत लिखा गया है, ये है वो है, भगवान कुछ नहीं कर रहा है। अपनी कुछ जानकारी नहीं है और शास्त्र पर दोष देना, तो कंस लगा देवताओं पर दोष देने। उन्होंने आकाशवाणी किया कि देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, ये पुत्र हुआ नहीं। अरे पुत्र हुआ तो मर गए थे, सो गए थे, तो कैसे जानोगे कि पुत्र हुआ। वो सोचता था कि कोई पुत्र होगा तो फिर बस फाटक खोलकर कैसे जाएगा। उसको ये भी पता नहीं था कि फाटक खुला था और वसुदेव जी के गोकुल से लौटने तक खुला रहा, और लौट जाने के बाद फिर जेल का प्रेम बंद। पहरेदार भी नहीं जाने, जब वसुदेव जी निकल रहे थे पुत्र को लेकर गोद में, तो पहरेदार भी ऐसे सोए थे जैसे लगता था कि उसमें चेतना ही नहीं है, मरे जैसे सो गए थे, और फाटक खुला तो कोई आवाज नहीं हुई। कुत्ते भी सब सो गए थे, वसुदेव जी को एक कुकुर भी भौंका नहीं आधी रात के समय। वो सब भी जोग माया ने सुला दिया था सबको, पहरेदार सो गए और नगर के जितने नागरिक थे वे सब सो गए, कोई गली में नहीं चल रहा था। एक तो वर्षा हो रही थी, तो वर्षा में कोई गली में कैसे चला, झिमी झिमी वर्षा हो रही थी तो सब लोग सो गए घर में, कोई देखा ही नहीं कि कोई आदमी अपने बच्चे को लेकर के जा रहा है। इस तरह से निर्बाध गति से चले गए। जमुना जी में बाढ़ आई थी, बाढ़ भी जमुना जी का जलस्तर भी भगवान का चरण कमल छू करके नीचे हो गया, चले गए। और जब गोकुल पहुंचे वसुदेव जी तो वहां भी सब लोग सोए थे, भगवान की योग माया शक्ति सबको सुला दी थी, कोई नहीं जाना। ऐसे नहीं था कोई चरवाहा खोल गाय खोज रहा हो, इधर उधर घूम रहा हो, प्राय ग्वाले रात में जगते हैं गायों की हिफाजत के लिए, लेकिन वहां भी कोई नहीं जगा। अपने पुत्र को पहुंचाया है और जसोदा की पुत्री को लेकर के आए दुर्गा जी। यह बात गर्गाचार्य जी ने कह दिया नंद बाबा से कि पहले कभी आपका पुत्र वसुदेव जी के यहां भी जन्म लिया है। तो परम विद्वान गर्गाचार्य जी बोल रहे थे पहले जन्म लिया, प्रागयम वसुदेव से कति जातस्तव आत्मज, तव आत्मज, आपका बेटा पहले कभी वसुदेव जी के यहां भी जन्म लिया था। तो पहले मतलब नंद बाबा ये समझे अच्छा कई जन्म हुआ है इसका, तो पहले किसी जन्म में उनका भी बेटा रहा है। प्राक का अर्थ है पहले, तो पहले का अर्थ ये नहीं है कि आपके यहां जन्म लेने से, वास्तविक अर्थ तो यही था कि आपके यहां जन्म लेने से पहले वसुदेव जी के यहां जन्म लिया था तब वहां से आया है, ये वो कहना चाहते थे। लेकिन नंद बाबा ये समझे कि अच्छा पहले जन्म लिया था, हाँ तो कई बार जन्म हुआ होगा, वो तो बहुत अच्छा है, हमारे भाई का भी बेटा बना है वसुदेव जी का भी, तो बहुत अच्छा हो। और जब कृष्ण मथुरा गए तो वसुदेव जी लगे कहने कि अब इसको यही रहने दीजिए, इतना दिन उधर रहा गोकुल में, पढ़ा लिखा नहीं, गाय बकरी चराया, केवल इसको पढ़ाना चाहते हैं। तो नंद बाबा इसलिए छोड़ भी दिए, अरे गांव में घूमने वाला लड़का, गाय चराने वाला, और शहर में आ गया, बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े मिनिस्टरों से परिचय होगा, देश दुनिया देखेगा, अच्छा होगा, इसलिए संतोष किए। लेकिन ये नहीं जानते थे कि आएगा ही नहीं। यहां उद्धव जी संतोष दे रहे हैं कि आगमिष्यत दीर्घेण, अदीर्घेण काले न अच्युत आगमिष्यति, वे आएंगे और आप दोनों का प्रिय करेंगे। और अभी देवकी वसुदेव का प्रिय कर रहे हैं, जादुओं का पालन कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो आएंगे। तो नंद बाबा मानो ये कह दिए कि हम विश्वास नहीं करते हैं कि आएगा, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। तो अपने बाबा विश्वास कीजिए, कृष्ण का वचन झूठा नहीं होता है। हत्वा कंसम रंग मध्य प्रतीपम सर्वसात्वताम जदा वह समागत कृष्ण सत्यम करोति तप। नंद महाराज आप देखे रंग मध्य, रंग भूमि में, मथुरा में कंस का वध करने के बाद कृष्ण ने आपसे कुछ कहा। प्रतीपम सर्वसात्वताम, समस्त जादुओं का वैरी, जादुओं को सताने वाला कंस जब मारा गया रंगभूमि में मथुरा में, प्रतीपम का शत्रु होता है, सर्वसात्वताम समस्त सात्वतों का, जादुओं का वैरी, दुख देने वाला रंग मध्य हत्वा कंसम हत्वा, कंस को रंगशाला में मारने के बाद कृष्ण ने आपसे, आपके पास आकर के जो कहा, जदा वह समागत्य, आपके निकट आकर एकांत में जो कृष्ण ने कहा, कृष्ण सत्यम करोति तत्, कृष्ण उसको सत्य कर रहे हैं। तो वहां नंद बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा आप जाइए गायों की देखरेख कीजिए और मैं आऊंगा ब्रज में। कोई डेट नहीं बोले थे, लेकिन नंद बाबा को ऐसा लगा कि ये तो ब्रज में आशक्त है ही, जल्दी आएगा। तो उन्होंने कहा कि आयास से मैं आऊंगा। तो इसको सत्य कर रहे हैं, वर्तमान समीपे वर्तमान वत्। पाणिनि के व्याकरण में एक सूत्र है कि कोई क्रिया बहुत जल्दी होने वाली है, हो ही नहीं है, तो उसको वर्तमान जैसा कहा जा सकता है। तो सत्य करेंगे ये न कह करके उद्धव जी कहते सत्य कर रहे हैं, बस यही समझिए कि पहुंच ही गए वे। ये वाक्य का ये अर्थ है। नंद बाबा को सांत्वना दे रहे, बस अब वो आ चुके हैं, कृष्ण आ चुके हैं। जब किसी व्यक्ति को ये बात कहनी होती है कि मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा, तो उसको कहता है, जाते समय विदा ले रहा है और कहता है, अच्छा तो मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। सुने हैं ना लोक में ऐसे लोग बोलते हैं, अच्छा तो मैं आ रहा है, वास्तव में जा रहा है, जिसको फिर भी बोल देता है मैं आ रहा हूं, मतलब शीघ्र आऊंगा। यही बात संस्कृत भाषा का भी है, संस्कृत भाषा में भी यही स्टाइल है, कृष्ण सत्य सत्यम करोति तप, जो कहा है उसको कृष्ण सत्य कर रहा है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी वे आएंगे। और मैं खिद्यतम महाभागो, आप महाभाग्यवान हैं, आपके पास इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, इतना स्नेह है कि आपके प्रेम से वे आकर्षित होकर के आ जाएंगे। आपके प्रेम से आकर्षित होकर आएंगे, मथुरा में नहीं रह पाएंगे, उनको ब्रज में ही रहना है, तो आ जाएंगे। इसीलिए कृष्ण शब्द कह रहे हैं। कृष्ण का एक यह भी अर्थ है कि जो आकृष्यमाण है, जिनको आसानी से खींचा जा सकता है, वे हैं कृष्ण। तो प्रेम से उनको खींचा जा सकता है। तो आप दोनों में महाप्रेम है तो आपके प्रेम से आकर्षित होकर के कृष्ण आपके पास आएंगे और आप उनको बिल्कुल निकट देखेंगे। द्रक्षत कृष्णमंति के मां खिद्यतम, आप खेद मत कीजिए, आपका जीवन सोचने लायक नहीं है, आप परम धन्य हैं, आप में महाप्रेम है कृष्ण के प्रति, इसलिए आप भाग्यवान हैं और आपके प्रेम से खींच करके कृष्ण आपके पास आएंगे और आप उनको बिल्कुल अंतिके द्रक्षत देखेंगे, बिल्कुल निकट, बिल्कुल निकट अपने देखेंगे, अपने गोद में बैठा करके देखेंगे उनको, वे आएंगे और आपके गोद में बैठेंगे। द्रक्षत कृष्णम अंतिके, अंतिके का अर्थ है समीपे, कृष्ण को बिल्कुल अपने समीप देखेंगे, अपने गोद में बैठे हुए देखेंगे। अब यहां से कुछ ज्ञान देना चालू किए, अंतर हृदय सभूतानाम आस्ते ज्योति रिवाइवसी, जैसे किसी काष्ठ में अग्नि रहता ही है, वर्तमान रहता है, केवल प्रकट किया जाता है, उसी तरह से कृष्ण सबके हृदय में हैं, सबके हृदय में हैं। आपके हृदय में तो ऐसे ही स्फुरित हो रहे हैं और बस हृदय में हैं और यहां से प्रकट होने में क्या देर है। इनके कहने का आशय यह है कि कृष्ण मथुरा में तो हैं ही, सबके हृदय में भी हैं, तो यहां से प्रकट होने में क्या देरी लगेगी, हृदय में है इसका उत्तर कर गोद में बैठेंगे, बस इतना ही देरी है। आप चिंता मत कीजिए, खेद मत कीजिए, आप अपने को भाग्यहीन मत कहिए, आप ही इस विश्व में सबसे बड़े भाग्यवान हैं। और जहां तक बात है कृष्ण से मिलने का, तो शीघ्र वे आएंगे, हमसे उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा, तो आप खेद मत कीजिए। जब उद्धव जी ने कहा कि अंतर हृदय से भूतानाम आस्ते, सभी जीवों के हृदय में वे हैं, नंद बाबा ने कहा कि हृदय में रहने से क्या लाभ है, गोद में कभी नहीं बैठ, गोद में बैठाने की इच्छा है तो कहते हैं अब तो आप देखेंगे, अपने गोद में देखेंगे बैठा हुआ, बहुत जल्दी आएंगे। और इसके बाद उद्धव जी ज्ञान का उपदेश करके कुछ सुखी करना चाहते हैं, तो इस कथा को दो पहल के बाद कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी।